Hare Krishna. It gives me immense pleasure to introduce His Grace Vishwarupa Prabhu. One is an official introduction, and followed by what I feel like speaking. I just totally like to introduce to him. Here you all of. Vishwarupa Prabhu, his legal name is Vivekanand Shanbag. He's a doctor by profession, graduated from JJ Hospital in 1985. He's a deputy director at the Bhakti Vedanta Hospital at Mira Road, which is a 200-bedded multi-speciality tertiary care hospital with cath lab and open heart surgery. Bhakti Vedanta Hospital has 8 branches. He leads spiritual care training and education and is the head of the Department of Spiritual Care. He is a chief faculty in the subject of spiritual care in nursing at the Bhaktivedanta Institute of Nursing Education and pioneer in creating the syllabus of spiritual care in nursing for BSc nursing and diploma nursing curriculum. He is a spiritual counselor for consultant doctors and senior nurses at the hospital. He is a senior spiritual counselor for Radha Gopinath Bhakt Samaj Chowpatty. He is a deputy director for Bhaktivedanta Hospice Vrindavan and Bhaktivedanta Eye Hospital Barsana. So we have a hospice just very close by, around the corner, and we have Eye Hospital at Barsana also. He has done his fellowship in palliative care and hospice from San Diego, California, USA in 2007. And postgraduate diploma in psychological counseling in 2009. This is official introduction. I know Vishwarupa Prabhu since the time I came to the movement, almost like 25 years back. There are so many things to his credit, you can say. In fact, he was one of those 5 counselors appointed by His Holiness Radhana Swami way back in 1990. When we started counselor system, you know, prominent, he was one of those chosen ones by His Holiness Radhana Swami. And that time, all the doctors who were around were being cultivated personally by His Grace Vishwarupa Prabhu. In fact, all of you know about this JHD course, which you all are doing. Many of you had got trained to also conduct the courses. The person who started a JHD course way back, 25 years back, is not connected at this moment with us, but he's a person who was cultivated by Vishwarupa Prabhu himself. Most of the prominent doctors at the hospital who are now running the hospital at a very high level, at director's level, are being were brought to the moment by His Grace Vishwarupa Prabhu. You can say 90% of the senior Vaishnavas of Radha Gopinath Mandir are being brought by Vishwarupa Prabhu personally because of his cultivation. They are all here. I am also one amongst them who is being cultivated by him. In fact, he gave me so much of love to me that, you know, something revolutionary. He is a very good cook also, by the way. You know, very good cook. When I came first to Mumbai, he said, I want to come to your house. I said, please come. But the second statement was something which I could not fathom. He said, I'll come and I'll cook for you all. So he came home and he went straight to the kitchen and he made a full dish. Kele ka sabji was the favorite, which I still relish, Prabhuji. So that's how he treated. You know, he came as a guest, but then he actually went to the kitchen, he cooked for all of us. That was how we did. The Hare Krishna Medicos, before the Bhaktivedanta Hospital actually came up, the Hare Krishna Medicos was actually run by Vishwarupa Prabhu. In fact, he is the person who would go to different slum areas, and he, along with Brahmachari, like Radha Gopinath Prabhu and others, would go with him. He would give medicines, and you know, the Brahmachari from the temple, at that time not many were there. Radha Gopinath Prabhu was one of them. He was the one who would go and he'll give some spiritual knowledge. This Prabhuji will give the medicines and prasad to all, and that's how they would be conducting the Hare Krishna Medicos camps all over. When we got a place here, Ramjiva Satsang, that's the time Radhana Swami appointed him to take care of that particular place. here in Vrindavan. That's when he stayed here for almost like 2 years, and he was taking care of that place, trying to establish ourselves over here. For some reasons, it never came to us, and then of course he came back to Bombay. Hospital started, and then he was eventually made the director of the spiritual care department, which is one of the most important department. This was actually the desire of His Holiness Radhana Swami. He said that we don't want a hospital just for the sake of having a hospital. We want that devotees, patients who come here, the doctors, all of them should get the spiritual, especially patients should get the spiritual care. This is something which is unheard of in hospitals. We don't have a spiritual care department hospital. But here at Bhaktivedanta Hospital, we have a spiritual care department, team of spiritual devotees who are taking care of the patients, giving them spiritual knowledge, helping them when they leave the body, what to chant, you know, take shelter of the holy names, all those. So this is the service that Prabhuji is doing there. And another thing, one very important quality of Vishnu Prabhu is that he is a Dhamvasi. He has love for this land of Vrindavan. In fact, Maharaj calls him as, you know, our Dham Pradakshina. You know, he's just Dham Sevak, you can say. He's a person who is leading all of us. In fact, he has conducted so many, tours to this place, guided so many to come here and take, you know, get attached to this holy place. And when Barsana camp started in 1992, since that time, Vishnu Prabhu has been actively involved to the extent that now, you know, after 25 years, this camp has expanded so much that almost like more than 1,000 of the patients at Barsana are taking advantage of this. In the sense, they've been restoring the vision to so many Brijvasis. It's a service which His Holiness Radhana Swami Maharaj very dear to his heart. And Vishnu Prabhu has been actively involved. In fact, he oversees the whole camp. At the same time, at the end of the camp, he takes all for, you know, 1 or 2 days yatra to the different holy places. You know, so he's a person who has so much of love for this. So whatever comes out from his mouth today will be like pure nectar, and all of us will be eagerly waiting for to hear from him. And anything personal about it is that, you know, like when he says that I'll offer prayers, he becomes very personal in offering prayers. Like suppose you tell him that, you know, Prabhuji, please offer me something. He said, what should I pray for you? And he'll actually write it down. So whenever he takes a holy bath in any place, he'll actually take a dip, taking your name and praying actually what you actually prayed, asking him for pray for, and then send SMS that I prayed for you at this place. Normally when we say pray means, you know, we say I prayed for you. I mean, it's casual, no, but he's not casual, he's very personal. And he actually takes that, you know, oh please tell me, what do you want me to pray for? And then he'll pray and he'll say, and he'll send an SMS. I have prayed for you at this place, I'd pray for this place. And personally for me, because my daughter was not well, she had this tumor in 2005 when she was only 5 years old. It was Vishwaru Prabhu actually who actually prayed for her. He personally came to us. He suggested the child oncologist whom we should go, made an appointment with her. Otherwise, we didn't know what to do. But he made a connection with that lady, and my daughter got treatment from her. It was 6 months of intense treatment which she underwent, and my wife had to undergo. That particular period was very much for her. But it was Vishwaru Prabhu was always there with us, all the time praying for her. All throughout, whenever you would come to the Dham, whenever you go to any holy places, I pray for your daughter, I prayed for your daughter, I prayed for daughter. That's how it is so personal. I am very grateful to you, Prabhuji, for everything. Grateful to you for all that you have been doing for us, all that you are doing and will do. Hare Krishna. Thank you very much.
Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kun. ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರಾವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಬಿಹಾರಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ 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 ಹರಿ 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 ಜಯ ಪ್ರಭುಪದ ಜಯ ಪ್ರಭುಪದ ಪ್ರಭುಪದ ಜಯ ಪ್ರಭುಪದ ಜಯ ಜಯ ಗುರುದೇವ್ 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 ಜಯ ಗುರುದೇವ್ ಜೈ ಗೌರ ಪ್ರೇಮಾನಂದೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ವೆನ್ ಮೈ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಲೀವ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲೀವ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months. So Vishwaroop Prabhu actually gave so much of personal attention to my mother-in-law Kirtida Mataji, and she asked, he asked her, what is your desire? He said, I want to be taken to Vrindavan and Mayapur. So it was Vishwaroop Prabhu who actually took my mother-in-law with my father-in-law Vrishabhanu Prabhu and my wife and took her to all the places of Vrindavan and then later on to all the places at Shridham Mayapur. And that was her desire, and then after that she left her body. Hare Krishna.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.
హరే కృష్ణ. ఆప్ సబ్కా శ్రీ వృందావన్ ధామ్ మే స్వాగత్ హై. श्रावण के महीने में आप सब राधाष्टमी के मौसम में श्री वृंदावन धाम में आए हैं. आप सबका स्वागत है और मेरी तरफ से आप सबके लिए हृदयपूर्वक कृतज्ञता, हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड मुझे यहां बुलाने के लिए आपके बीच में. हमारे दुनिया में जहां पर हम रहते हैं, जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा इसका सिलसिला चला रहता है. सब लोग यहां पर जो भी आते हैं वो जन्म को पाते हैं, दुख पाते हैं जन्म का, फिर रोग का दुख पाते हैं, फिर बूढ़े होने का दुख प्राप्त करते हैं और एक दिन भयपूर्वक जिन चिंतन करके एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं. तो ये भौतिक दुनिया है. भौतिक दुनिया यानी यहां पर सब लोग जन्म, ये एक महत तत्व है भगवान के पूरे निर्माण में, एक महा समझ सकते हैं. और वो बादल के छाया है, उसको भौतिक दुनिया कहते हैं. और केवल एक दुनिया नहीं है, उसके अंदर अनंत ब्रह्मांड है. हमारा जो पृथ्वी है वो एक सिस्टम का एक ग्रह है. पूरी जो गैलेक्सी है उसको हम एक ब्रह्मांड समझ सकते हैं. उसमें 14 भुवन है, उसमें पृथ्वी लोक बीच में है, नीचे 6 नरक लोक है, हेलिश प्लैनेट्स, बीच में पृथ्वी भूलोक है, उसके ऊपर 7 प्रकार के अलग प्रकार के स्वर्ग लोक हैं, उसके ऊपर सबसे टॉप मोस्ट ब्रह्मा लोक है. ये सब मिलकर एक ब्रह्मांड पैदा होता है और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है अवकाश में तैर रहे हैं और वो सब महाविष्णु के शरीर के छिद्रों से बीज रूप में निर्मित होते हैं, फिर विकास होकर उनका पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स तैयार होता है. एक थोड़ा एको दे रहे हो उधर. तो ये ब्रह्मांड सारे महाविष्णु के शरीर से आते हैं और ये महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड में गर्भ उदक शाही विष्णु के रूप में विभाजित हो जाते हैं. तो एक महाविष्णु है लेकिन अनेक गर्भोदक शाही विष्णु है. फिर एक गर्भोदक शाही विष्णु से एक और विष्णु उत्पन्न होते हैं, शिरोदक शाही विष्णु, और वो सब हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाते हैं. और ये महाविष्णु के आगे जब महत्त्व हम पार करते हैं तो एक विरजा नदी है बहुत बड़ी, वी रजा, जो रजोगुण से हमको परे ले जाती है. और उसके आगे ब्रह्म ज्योति है और उस ब्रह्म ज्योति में जैसे यहां पर अनंत कोटि ब्रह्मांड है वैसे वहां पर अनंत कोटि वैकुंठ है जो अवकाश में वहां के ब्रह्म ज्योति में तैरते रहते हैं और वहां पर कोई जन्म मृत्यु नहीं होता है. ब्रह्म ज्योति सत का पूर्ण प्रकट्य है, यानी द सत पोटेंसी इज फुल्ली मैनिफेस्टेड एज ब्रह्म ज्योति. और वो ब्रह्म ज्योति में सारे वैकुंठ, जहां पर अनंत प्रकार के विष्णु, वैकुंठाधिपति विष्णु जो है वो नियंत्रण करते हैं, सब संभालते हैं. वहां पर सब लोग भगवान की ऐश्वर्य भाव में आदर पूर्वक सेवा करते हैं. उसके आगे जाएंगे हम तो एक विशेष विभाग है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. हाँ, पहले बताया था वो मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत, उस अभी बता रहे हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसमें वैकुंठ है. वैकुंठ के आगे एक बहुत विशेष विभाग है, इसको कहते हैं ना स्पेशलाइज्ड एरिया, उसमें द्वारका आता है भगवान का. फिर उसके आगे अयोध्या आती है प्रभु रामचंद्र का. फिर उसके आगे कृष्ण भगवान की मथुरा आती है और उसके आगे एक विभाग है जिसको गौलोक वृंदावन कहते हैं. जहां तक वैकुंठ है, द्वारका है, अयोध्या है और मथुरा है, यहां पर सब भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं। श्री कृष्णा इज नोन एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna. Somebody's recording? Okay, so this is failed. तो जब तक मथुरा है तब तक सब ऐश्वर्य भाव है, भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं सब लोग। लेकिन अगर आप उसके आगे जाएंगे तो वो जो इलाका है वो भगवान के जो अनुभूति है कि वो भगवान है वो वहां पर नहीं है। वहां पर भगवान किसी के दोस्त हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के प्रेमी हैं, केवल उनको इस रूप में जानते हैं। और वहां पर अति उत्कट जो प्रेम भावना होती है उसका अनुभव होता है। भगवान अपने भक्तों के साथ में अलग अलग प्रकार के रसों में आनंद लेते हैं। और वो जो ब्रह्म ज्योति का मैंने वर्णन किया था, वो ब्रह्म ज्योति यानी जो भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता है नीले रंग का, नीली आभा जो होती है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो वो सब जितने वैकुंठ है सबको प्रकाशित करती है, इसलिए वहां पर कोई बिजली, वहां पर कोई सूरज चांद का जरूरत नहीं होता है। भगवान गीता में बताते हैं कि मेरे धाम में कोई सूरज चंद्र और बिजली का कोई काम नहीं है। तो वो जो गोलोक धाम है वो अनंत है और उसमें भगवान यशोदा, नंद महाराज, देवकी, वो सबके साथ में, देवकी तो मथुरा में रहते हैं लेकिन बाकी सब जितने भी ब्रज के भक्त हैं वो सब वहां रहते हैं, उनको नित्य सिद्ध भक्त कहते हैं। तो जब पृथ्वी माता रोते रोते गई उधर, यहां के शिरोधकशाही विष्णु के पास गई है ना, यहां जब उन पर अत्याचार हुआ पृथ्वी पर राक्षसों का, तो वो गाय का रूप धारण करके कहां गई, क्षीर सागर के पास में गई, जहां पर बीच समुद्र में शिरोधकशाही विष्णु विराजमान है, ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के साथ पहुंची वहां पर वो। तो उन्होंने प्रार्थना किया ब्रह्मा जी ने, तो विष्णु ने उनको जवाब दिया, लेकिन गर्ग संहिता के अनुसार विष्णु उनको गौलोक धाम लेके गए सबको, सबको पृथ्वी को गाय के रूप में, सारे देवताओं को, ब्रह्मा को, साथ में शिरोधकशायी विष्णु उनको लेके गए गौलोक वृंदावन में। और वहां पर भगवान ने उनको दर्शन दिया, श्री हरि भगवान ने, और वहां पर नरसिम्हा भगवान और प्रभु रामचंद्र और अनेक भगवान के अवतार प्रकट हो गए, वो सब श्री हरि में विलीन हो गए सबके आंखों के सामने। सब देखते रहे, अरे श्री हरि कौन है ये, कितने महान है ये। प्रभु रामचंद्र भी धनुष बाण लेकर अपने भाइयों के साथ, सेना के साथ में उनके अंदर विलीन हो जाते हैं। नरसिंह भगवान भी अपने आठ भुजाओं के साथ उनके अंदर विलीन हो जाते हैं। जितने भी भगवान के अवतार एक एक करके प्रकट होते हैं उनके सामने और उनके अंदर प्रकट प्रवेश करते हैं। उसके बाद भगवान पृथ्वी से बात करते हैं कि आपकी समस्या का मैं समाधान करूंगा, मैं पृथ्वी पर आऊंगा और कंस का नाश करके सब राक्षसों का वध करूंगा और आपका जो असत्य और पाप का भार है वो हम नष्ट कर देंगे। तब राधा रानी जो खड़ी है उनके साथ में गौलोक वृंदावन में, वो मूर्छित हो जाती है। भगवान को बड़ा आश्चर्य होता है, अरे आप मूर्छित क्यों हो गए। तो उनको होश में लाते हैं सब लोग, फिर प्रश्न करते हैं कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप अभी हम ऐलान कर रहे हैं ना सबके सामने, अनाउंसमेंट कर रहे हैं ना कि जा रहेंगे या अवतार लेंगे, राक्षस को मारेंगे, मतलब मुझे छोड़ के जाएंगे आप। तो मैं विरह, आने वाले विरह की भावना से अभी मुझे दुख हो रहा था इसलिए मैं बेहोश हो गई थी। बोला ऐसा नहीं है, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं आपके संग ही जाने वाला हूं। तो वहां पर एक विशेष बात कहते हैं, वहां पर कहते हैं कि क्योंकि आप, क्योंकि राधा रानी वृंदावन, श्री गोवर्धन और श्री यमुना, ये तीन चीज जहां पर नहीं है वहां पर वो नहीं रहती है, जहां पर भी रहेगी ये तीन चीज होना आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं क्योंकि आपका ये मंतव्य है कि आप श्री वृंदावन धाम, श्री गिरिराज गोवर्धन और यमुना के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए आपका मन ये जानते हुए मैंने पहले से ही इन तीनों को पृथ्वी पर भेज दिया है। 84 कोस का गौलोक वृंदावन का हिस्सा पूरे गोवर्धन के साथ और पूरी यमुना के साथ मैंने पहले से पृथ्वी पर भेज दिया है। तो फिर वो कहते हैं कि मैं आऊंगी आपके साथ, लेकिन सबसे पहले आपको ही देखूंगी, आपको ही सुनूंगी, आपको ही स्पर्श करूंगी, आपका ही अनुभव करूंगी, तब सब मेरी सारी इंद्रिया बंद रहेगी। जब तक भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिया तब तक राजा रानी ने आंख नहीं खोली, ना कुछ जवाब दिया ना कुछ सुना। तो इसमें हमारे लिए सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है कि जो सर्वोच्च भूमि है, सर्वोच्च लोक है, सर्वोच्च जो जहां भगवान निवास करते हैं, उसका 84 कोस का हिस्सा इस भूमि पर प्रकट हो गया है, जिस पर हम सब भाग्यशाली जीव बैठे हुए हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ व्हाट वी आर स्पीकिंग एंड डिस्कसिंग, कि हम कोई साधारण मर्त्य लोक में बैठे नहीं है। बाकी सब भूमि जो है वो सब मर्त्य लोक है। मर्त्य लोक क्यों है? क्योंकि वहां पर एक घटना प्रधान है, वो है मृत्यु। इसलिए उसको मर्त्य लोक कहते हैं, द लैंड ऑफ डेथ। द प्रोमिनेंट एक्टिविटी इन दैट लैंड विच इज ओवरवेलमिंग एवरीबडी इज डेथ। तो हम लोग उस गौलोक वृंदावन के हिस्से में बैठे हुए हैं जिसको पृथ्वी पर आने के पश्चात भौम वृंदावन कहते हैं, भूमि पर बसा हुआ वृंदावन, भूमि देवी यानी पृथ्वी देवी के ऊपर बसा हुआ वृंदावन। वैसे तो 84 कोस इसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो तो एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वास्तव में ये अनंत है। जैसे वो अनंत है, वो अनंत का हिस्सा भी अनंत होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो पूर्ण का हिस्सा जब यहां आता है वो भी अनंत ही होता है, लेकिन टेक्निकल के हिसाब से उसका माप जो है वो 84 कोस है, एक कोस 2 मील का होता है। तो इस तरह से यहां पर हमारा निवास है। तो इसकी विशेषता क्या है? गोलोक वृंदावन एक जगह पर है जहां पर भगवान अपनी भगवत्ता को भूल कर रहते हैं, कोई जानता नहीं उनको भगवान के रूप में, लेकिन वहां पर कुछ कुछ चीजें नहीं होती है। हालांकि वो चिरंतन धाम है भगवान का, वहां पर भगवान नित्य लीला करते रहते हैं, अपने अपने नित्य सिद्ध भक्तों के साथ में, वो जो अलग प्रकार के भक्त वहां पर पहुंचते हैं साधना करके भक्ति करके, वो सब वहां पर निवास करते हैं अपने अपने भाव में, और भगवान उनसे लीला करते रहते हैं। वहां पर मृत्यु नहीं है, वहां पर जन्म नहीं है, वहां पर दिव्य देह प्राप्त है हमको। ये देह जो मरने वाला है वो वहां पर नहीं होता है, सच्चिदानंद देह प्राप्त होता है वहां पर। वहां पर शरीर से खुशबू निकलती है अनंत प्रकार की, हर एक की अलग अलग खुशबू होती है। अगर हम लोग अभी समझो इतने लोग बैठे हुए हैं तो एक सुंदर सा सुगंधों का मिलाप मिलेगा आपको। आप आएंगे तो आपको ऐसा सुंदर अलग अलग प्रकार का मिक्सचर आपको सुगंधित मिलेगा। ऐसा कैसा दुनिया होगी वो, जैसे इमेजिन। उस शरीर में मल मूत्र नहीं होगा, उस शरीर से गंदी बू वाला पसीना नहीं होगा, ऐसा शरीर वहां पर होता है। लेकिन वहां पर भगवान के 13 प्रकार के रस होते हैं जिसमें भगवान लीला करते हैं। उसमें एक रस है वीर रस। तो वीर रस के लिए कोई दुश्मन चाहिए लड़ने के लिए, लेकिन वहां पर कोई दुश्मन है ही नहीं, सब लोग फ्रेंड है। कुश्ती भी खेलेंगे तो फ्रेंडली कुश्ती खेलेंगे, उसमें वो नहीं आनंद आएगा, अरे राक्षस को मार दिया, उसको खून कर दिया उसका। तो वो जो भगवान की वीर रस की भूख है वो वहां पर पूरी नहीं होती है। इसलिए भगवान के कुछ भक्त लोग जो है वो राक्षस का रोल लेकर यहां पर आते हैं और यहां की लीला में एकदम रियल युद्ध करते हैं और पूरा आनंद देते हैं भगवान को, युद्ध का, वीर रस का, वीर कौशल्य दिखाने का। तो वहां पर वो नहीं होता है जो यहां पर होता है। ऐसी कई छोटी छोटी चीजें हैं जो यहां पर होती है लेकिन वहां पर नहीं होती है। तो ये जो वृंदावन धाम है ये उस धाम से अलग नहीं है। सबसे पहला हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग किसी साधारण भूमि पर नहीं आए हैं, हम लोग यहां पर भौम वृंदावन में आए हैं। और जैसा गुणधर्म उस गोलोक वृंदावन का है वही गुणधर्म इस भौम वृंदावन का होता है। यहां पर भी देवता लोग जब स्वर्ग लोक से यहां निहारते हैं तो यहां के सभी लोगों को वो चतुर्भुज सिद्ध रूप में निहारते हैं, पद्म पुराण में लिखा है। उनको जीवन मुक्त रूप में देखते हैं। यहां की जो रज का कर्ण है ना, जैसे अभी अनंत मैंने बताया वैकुंठ है, उसमें अनंत विष्णु है, हर एक विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी हैं, और ऐसे अनंत कोटि लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा करती रहती हैं। तो कहा गया है कि सारे वैकुंठों का सारा धन जितना भी है, आप सोच सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अंदाज देता हूं कैसा वेल्थ का मतलब क्या होता है। लक्ष्मी जो है ना उसके अंदर शरीर के ऊपर बहुत सारे गहने होते हैं, है ना, जानते ना, गले में कई सारे गहने होते हैं, हाथ में होते हैं, बाजू में होते हैं, शीश में होते हैं, कानों में होते हैं, कमर में होते हैं, पैर पे होते हैं, हर जगह पर, हाथों में उंगलियों में अंगूठियां होती है, यहां पर एक अलंकार होता है। कितने प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया है, कितने प्रकार के कंगन है यहां से लेके यहां तक, अलग अलग प्रकार के। तो कहते हैं कि एक बार ऐसे मराठी में कहते ना लुटू पुटू की लड़ाई, मतलब क्या, ऐसे फ्रेंडली फाइट होता है ना। तो जब पति पत्नी का एक बार ऐसा फ्रेंडली फाइट हो गया तो एक कंगन टूट गया, ऐसे होता है ना कभी कभी, आपने अनुभव किया कभी? तो ऐसे एक कंगन टूट गया तो कहते हैं कि वो टूटे हुए कंगन पर सारे ब्रह्मांड का इकोनॉमिक्स चल रहा है। आनंदन बाबू आपको कुछ इसमें सोच सकते हैं आप, एक टूटे हुए कंगन पर पूरे पूरे भौतिक जगत का इकोनॉमिक्स चल रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे कंगन वो पहनती है। एक कंगन, एक लक्ष्मी देवी वजह से बहुत सारे कंगन पहनती है, और ऐसे लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से भी मानव, ऐसे अनंत लक्ष्मियां भगवान की सेवा करते रहते। तो ऐसे अनंत वैकुंठ में कितना ऐश्वर्य होगा अभी सोच सकते हैं आप। तो वो अनंत वैकुंठ के सारे ऐश्वर्य जो है वो इकट्ठा करके आप समझो आप लाते हो यहां पर, तो यहां के वृंदावन के एक रज का कण भी आप खरीद ले सकते हो, इतना ये मूल्यवान है। एक बार एक राजा यहां पर आया था स्वामी हरिदास को मिलने के लिए। स्वामी हरिदास जी कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु जब यहां पर थे, अवतार लिए थे उन्होंने, तभी कई सारे आचार्य यहां पर उपस्थित थे, जैसे वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के, जैसे हित हरिवंश गोस्वामी बंसी के अवतार, जैसे स्वामी हरिदास जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया, ऐसे बहुत सारे आचार्य यहां पर एक साथ उपस्थित, जीव गोस्वामी भी उस समय थे, बहुत सारे आचार्य थे। तो स्वामी हरिदास उनमें से एक है, बहुत प्रसिद्ध संत, सिद्ध संत थे वो, और खास करके गायन कला में और काव्य कला में बहुत निपुण थे वो। आज भी उनके नाम से संगीत प्रतियोगिताएं भारत में होती रहती है। तो वो निधि वन में यहां पर एक ऐसी कुटी में बैठकर भजन करते थे कि उसमें आपको बिना सर्प की तरह आप उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, आपको ऐसे प्रवेश करना पड़ेगा, पूरा झुककर भी नहीं, पूरा ऐसे लेट के आगे आगे जाना पड़ेगा। ऐसी कुटी में वो प्रवेश करते थे, रहते थे, भजन करते थे, और वहीं पर बांके बिहारी जी उनके भजन के द्वारा प्रकट हुए थे उनके सामने, और वहीं पर दोनों ने बांके बिहारी का बहुत देर तक भजन किया था। तो उनको एक राजा मिलने आया, तो राजा को उसके जो सहायता था, साथी वाला था, वो भी झुक कर अंदर गया और महाराज को बोला कि महाराज वो राजा है आपको मिलने के लिए। तो महाराज ने कहा मैं राजा से वगैरह मिलता नहीं हूं, मैं किसी से नहीं मिलता, खास करके ऐश्वर्य वाले आदमी से नहीं मिलता मैं, उसको बोलो जाओ। तो फिर क्रॉल करके बाहर आ गए, वो बोले महाराज आपको हमारे महाराज मिलना नहीं चाहते। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इतने दूर से आया हूं और अभी तो वो मुझे मिलने को मना कर रहे हैं, मतलब कोई विशेष विभूति हुई है, मुझे तो उसको मिलना ही है। हाँ, तो वो को राजा को मिलने को लालायत नहीं है, इच्छा ही नहीं है उनको मिलने के लिए। तो वो भी झुक कर अंदर चले गए, तो बहुत अच्छा लगा उनको, दंडवत किया उन्होंने। उन्होंने कहा महाराज जी कुछ सेवा बताओ, हम राजा हैं, हमारे पास थोड़ा बहुत धन है, हम कुछ सेवा करना चाहते हैं आपकी, आप बता दो। उन्होंने कभी कोई सेवा की जरूरत नहीं, वृंदावन धाम परिपूर्ण है, कोई सेवा की जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, कुछ सेवा थोड़ी बहुत हमारी तरफ से जरूरत ना होने पर भी हम करना चाहते हैं। अच्छा चलो। तो फिर सब लोग बाहर निकलते हैं उस गुफा से, कुटी से, और वो केशी घाट पे उनको लेके आते हैं। हाँ, अभी केशी घाट एक जगह है जहां पर भगवान कृष्ण ने केशी को मारा है, और वहां पर श्याम सुंदर जी भगवान कृष्ण जो है वो खड़े रहते हैं और सबका सत्वगुण रजोगुण तमोगुण छीनते रहते हैं, सबकी भौतिक इच्छाएं छीनते रहते हैं। हाँ, सबको एकदम भौतिक इच्छा से विरहित करते हैं। तो कहा, उधर कहा है कि अगर किसी को भौतिक इच्छा है और किसी को यहां पर मन लगाने की अभी भी इच्छा है और दिल लगा हुआ है, वहां पर मत जाना, क्योंकि तो वहां पर वो त्रिभंगी श्याम सुंदर खड़े हैं, वो आपका जो भी बचा कुचा इच्छा है सब छीन लेंगे। फिर आपको सोचना पड़ेगा कहां जाऊं अभी मैं। तो जो भगवान का प्रेम चाहते हैं वही केशी घाट जाएं, ऐसे बताया गया है, क्योंकि वहां पर जाते ही वो अपना हृदय को हरण कर लेते हैं। ऐसी जगह है केशी घाट, और वहां पर घाट मतलब क्या, वो सीढ़ियां होती है ऐसी। तो वहां पर ले गए उसको, राजा को, और बताया कि देखो गौर से देखो, वो कोने में एक सीढ़ी का एक टुकड़ा टूटा हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, उसको आप रिपेयर करो। अभी राजा को आप बोलेंगे एक सीढ़ी का कोना रिपेयर करो, तो राजा बोलता है महाराज मैं ऐसे कई घाट बांध सकता हूं, आप बताओ कितने घाट बांधने हैं। तो बोले नहीं नहीं वो जो कोना है ना टूटा हुआ उसको रिपेयर करो आप। तो राजा को लगता है अरे क्या महाराज जी आप मेरे लायक कुछ सेवा दो। बोला अच्छा। तो महाराज ने उनके सर पे कुछ क्षण के लिए हाथ रखा तो उनको दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ। अभी आपको जो दिखाई पड़ता है ना यहाँ पर गंदगी कीचड़ सुअर ये वो सब मिसमैनेज्ड रोड्स एंड ब्रोकन रोड्स दिखाई पड़ता है आपको, क्या है सब ये वृंदावन कैसा है? ये तो बाह्य स्वरूप है वृंदावन का जो भारत देश में एक राज्य के रूप में आपको मिल रहा है, लेकिन इसके परे वृंदावन है जो हमारे आंखों में दिखाई पड़ रहा है वो सही वृंदावन नहीं है, वो तो बदलता रहता है। हम 30 साल से आ रहे हैं तो कई चीजें बदल गई है, अभी आप है नहीं वो चीजें, कई सरोवर नष्ट हो गए हैं, कई रस्ते नष्ट हो गए, नए रस्ते बने हुए हैं, नई नई बिल्डिंग दिखाई पड़ती है, कब हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कहां से आए थे कहां जा रहे हैं। वो तो उसको वृंदावन नहीं कहते, वो तो वृंदावन है जरूर, लेकिन वो जो वृंदावन को हम देखने यहां पर आए वो वृंदावन नहीं है, वो तो पर्दे के पीछे है, माया का जो पर्दा लगा हुआ है उसके ये साइड का हम देख रहे हैं सब। इसमें वो सुअर भी आता है और कीचड़ भी आता है और गंदगी भी आती है, सब कुछ आता है उसके अंदर। तो जैसे ही महाराज ने सर पर हाथ रखा अपने भाव से तो ये राजा को दिव्य वृंदावन का दर्शन हो गया। कैसा हुआ? सब चमक रहा है पूरा, मणि कंचन रत्नों से भरा हुआ है सब जगह पे, सब जगह कल्प वृक्ष है, सब एक एक व्यक्ति जो है वो ऐसे दिव्य श्रृंगार से चमक रहे हैं तेज से, और जो घाट है वो पूरा मणि और कंचन से बना हुआ है चमचमाता हुआ, और उसमें एक टुकड़ा टूटा हुआ है लास्ट में। तो राजा तुरंत चरण में गिर गए महाराज के, तो महाराज वो मेरे सारे संपत्ति के साथ में वो टूटे और टुकड़ा में जो है वो पूरा नहीं रिपेयर नहीं कर सकता मैं। सोचिए आप, महाराज का पूरा एकदम अहंकार जमीन दोस्त हो गया, मेरे पूरे ऐश्वर्य के साथ में मैं वो टूटा हुआ कोना जो है वो रिपेयर नहीं कर सकता, ये वृंदावन है जहां पर हम लोग बैठे हैं। केवल गड़बड़ एक ही है कि हम लोग अभी भी थोड़ा रजोगुण थोड़ा तमोगुण थोड़ा सत्वगुण थोड़ा मिक्सचर लेके थोड़ी कुछ बची कुछी भौतिक इच्छाएं थोड़ी मन्नतें मन में ये सारा मिक्सचर लेकर ये भेलपुरी लेकर हम लोग आए यहां पर। इसलिए हमको वो दर्शन नहीं होता है उसका। जब तक हमारा मन किसी भी भौतिक स्वार्थी कामनाओं से लिप्त है तब तक हमें ये दिव्य वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कहते हैं, विषय छाड़ी या खोबे शुद्ध होबे मन तबे होमा हैराबोसे श्री वृंदावन। हे भगवान जब तक विषयों से मेरा मन भरा हुआ है तब तक वृंदावन दिखाई कैसे पड़ेगा, और जब विषय को मैं त्याग कर पाऊंगा हाँ तब मुझे ये वृंदावन का दर्शन होगा। तो हम लोग वो प्रयास करने के लिए यहां पर आए, ताकि कैसा है ना पर्दा भी लगा होगा ना समझो, और पर्दा लगा हुआ है लेकिन खुशबू तो आती है ना पीछे का पक रहा है, हाँ जलेबी बन रही है लड्डू बन रहा है सब्जी बन रही है, पर्दा है कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन आइडिया तो आता है ना। वैसे ये वृंदावन धाम में अभी जो आपके सामने प्रकट नहीं हुआ है लेकिन इसका जो गौरव है वो यहां है, पर्दे के पीछे होने पर भी उसका गौरव पूरा आपके लिए प्रकट है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा वो लेकिन लाभ जरूर होगा। जैसे आप एनेस्थेसिया में हो और आपका ऑपरेशन हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑपरेशन तो हो रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कौन सा है, वो फाड़ रहे हैं कौन सा पहुंच रहे हैं किसको काट रहे हैं किसको निकाल रहे हैं, आपको केवल थोड़ा दर्द होगा एंड में, आप जो होश में आओगे दर्द होगा आपका दवा दिया जाएगा दर्द भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको जानकारी नहीं है इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से हमको नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर जो गौरव है उसका वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। दिव्य स्तर पर आपके आत्मा पर इसका सारा परिणाम अभी भी हो रहा है जिस जगह आप बैठे हो, लेकिन हमारी इंद्रियां अभी शुद्ध नहीं है इसलिए डायरेक्ट अनुभूति नहीं हो रही है उसकी। ऐसा ये धाम है। एक तो रज का कर्ण जो है, इस रज को कर्ण को प्राप्त करने के लिए सारे देवता लालायित रहते हैं लेकिन उनको प्राप्त नहीं होता है। भगवान का महाप्रसाद पाने के लिए सारे देवता लालायित रहते हैं क्योंकि देवताओं को तो एक बार सिरदुख साई विष्णु ले गए थे, सब लोग पहुंच गए वहां पर कुछ देर के लिए देखने के लिए, निवास नहीं मिलेगा उनको, सबको लौट के आना पड़ा वापस। उनका निवास इधर ही है, अंधकार के महत्त्व के अंधकार में ही निवास करते वो। तो वो क्या देखते हैं, चलो वहां पर जाने का तो एंट्रेंस नहीं है, लेकिन जब यहां भगवान यहां पे आते हैं तो हम लोग जा सकते हैं ना उनको देखने के लिए। लालायित रहते हैं वो, जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर के पास जाने के लिए अलाउड नहीं है, आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आपके इलाके में आए तो आप खिड़की से देख सकते हैं उनको, सिक्योरिटी के दूर से खिड़की से दर्शन कर सकते हैं। वैसे यहां पर देवताओं की स्थिति है, और देवताओं को उनका भोजन प्राप्त नहीं होता है, महाप्रसाद। एक बार ब्रह्मा जी ऐसे ही उनका महाप्रसाद पाने के लिए आए, वो देख रहे अरे ये तो जमुना किनारे बैठ के भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा मीमोहन लीला अलग है, अलग टाइम पे देख रहे हैं, सब खेल रहे हैं और ये सब भोजन कर रहे हैं, कमलाकार बैठे हुए हैं सब लोग भोजन कर रहे हैं, और अभी फिर देख रहे हैं उठ गए हैं सब लोग और जमुना जी में हाथ धोने जा रहे हैं। अभी हम जब खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ बचता है ना हाथ में, तो जाता है पानी के साथ में वो, तो ये जमुना जी में जा रहा है, तो तुरंत वो मछली बने। उन्होंने सोचा कि भगवान ने जो जो अपनी खाई है जूठन जो है अभी वो जमुना जी के जल में उतरने वाली है, तो मैं उसको मछली बन के खाऊंगा। तो मछली बन गए, तो भगवान बालक रूप में गए हाथ धोने के लिए, हाथ धो के धोने वाले थे तो देखा तो मछली घूम रही है। वो तो जानते हैं कि स्वयं भगवान है, वो सब जानते हैं कौन क्या है, तो समझ गए कि ब्रह्मा जी मछली बनकर आए हैं, तो दोनों में बांध लेते हैं और जमीन पे हाथ धोते हैं। ऐसा है हाँ, तो ब्रह्मा जी को भी वो महाप्रसाद नहीं मिल सकता है, देवता होने पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है, वो महाप्रसाद भगवान का मिलेगा ऐसा। और हम और आप यहां पर ना हम लोग ब्रह्मा है ना इंद्र है, लेकिन सब लोग कृष्ण बलराम का महाप्रसाद खाते हैं, हम लोग कितने भाग्यवान हैं देखो आप, क्योंकि वो भगवान का महाप्रसाद यानी हृदय की शुद्धि पूर्णता और भक्ति की प्राप्ति, ऐसा मतलब है, इसलिए वो ब्रह्मा जी भी आते हैं इधर। आप लोगों को पता होना चाहिए यहां पर कुछ गिने चुने देवता है, एक गणेश जी हैं, काम में मन में उनको निवास का लाइसेंस मिला है, बताऊंगा कहानी उसकी, एक शिव जी है और पार्वती जी है, उनको सब जगह रहने को मिला है, बाकी किसी देवता को यहां पर रहने का अलाउड नहीं है। सब लोग आते हैं यहां पर, आकाश में नाच करते हैं हाँ, जब कालिया लीला चल रही है, जब रासलीला चल रही है, सब लोग आकाश में आकर नृत्य करते हैं, उनको साइड देखते दर्शन करते हैं, फूल बरसाते हैं, निवास नहीं, नो रूम अवेलेबल अवेलेबल है तो भी नॉट पॉसिबल। ये देवताओं की स्थिति है, जो लोग भगवान के भक्त हैं उनके द्वारा शक्ति मिली है उनको, उनके द्वारा वो पूरे ये लोगों का नियंत्रण भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको नाइट स्टे का अलाउड नहीं है। सब आते हैं यहां पर, आते जाते रहते हैं, द्वारका में भी आते हैं वो, उधर भी उनको रहने का इंतजाम नहीं है, आना है काम करना है चले जाना है। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर के बंगले में गए समझो, आप उनको अपॉइंटमेंट दिया आपने, आप बोलेंगे रात को रह लो यहां पर, मैं रूम की ट्रेन कल सुबह है सर, रहूंगा यहां पर, तो क्या बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर आपको, बोले ये पागल आदमी इसको ले जाओ बाहर। वैसा ही देवताओं की स्थिति है भगवान के सामने, लेकिन हम लोग धानुका में अच्छी तरह रह रहे हैं। आप बोले क्या इसमें तो बांधा हुआ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, उसका 300-400 रुपए 500 रुपए 800 रुपए कुछ भाड़ा होगा, पता नहीं कितना है, हमने दे दिया और रह सकते हैं यहां पर, फिर क्या बड़ी बात है। इंद्र भी आ सकता है रहने के लिए यहां पर, नहीं आ सकता है, आप आ सकते हो। इसलिए हमको पता होना जरूरी है कि देवताओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य जन्म है, देवताओं के जन्म में इतने सारे भोग होते हैं, इसलिए वो ज्यादातर के भगवान की शुद्ध भक्ति में आना बहुत मुश्किल है उनके लिए। कुछ कुछ लोग आ पाते हैं, जैसे गणेश जी हैं, शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, कुछ कुछ लोग उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सारे देवता लोग शुद्ध भक्ति के मार्ग पर नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पर इतना भोग है, इतना भोग है। अभी सोचो आप, समझो आपके सर इधर 50 आदमी और औरतें, सुंदर सुगंधी औरतें बैठी हुई है, सुगंध वाली, तो क्या भजन करेंगे हम? हरे कृष्णा कर सकते क्या? ऐसा मोहित हो जाएंगे हम लोग सबको देखते हुए हाँ, और ऐसे फूल खिलते हैं वहां पर जो मुझारती मुरझाती नहीं है, इसलिए वो डालते रहते ऊपर, इतना स्टॉक है ना उधर, खाली खिल रहे लेकिन कोई मुरझाते नहीं है। इसलिए जब भी कोई भगवान की शादी हुई, कोई राक्षस का वध किया, कोई जन्म हो गया, कोई जन्मोत्सव हो रहा है, नंदोत्सव हो रहा है, विमान में आके बरसाते रहते हैं, ऐसा है। लेकिन इतना भोग के होने की वजह से, भोग शरीर में वो जीते हैं, भोग शरीर के होने की वजह से भगवान का भजन परिणामकारक रीति से नहीं होता है, इफेक्टिवली नहीं होता है। और नरक लोक में जो खाली नीचे के लोग हैं वो सब लोग भगवान के विद्रोही लोग हैं, शत्रु है भगवान के वो सब। कभी कभी उनका ऐश्वर्य स्वर्ग लोक के इतना ही होता है, नीचे जहां बलि महाराज रहते हैं सब लोग, तो उससे भी ज्यादा कभी कभी होता है, लेकिन सब भगवान के विद्रोही लोग हैं, तो वहां पर भजन नहीं हो सकता है। पृथ्वी लोक एक ही लोक है जहां पर हमने जन्म लिया है, वहां पर कैसा है, दुख पर्वता एवडे सुख जवा पाड़े, बहुत सारे दुख हैं, थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है बीच बीच में, है ना, सुख जवा पाड़े इतना सा दुख पर्वता एवडे, पर्वत के समान दुख, फिर वापस इतना दुख, फिर इतना सुख, तो ऐसे में भजन अच्छा होता है। मानते हैं आप लोग इसको? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? अरे दुख जो है ना हमारे पर वरदान है भगवान का, दुख जो है वो भगवान का वरदान है, कि दुख में ही असली भगवान की याद आती है। हाँ, दुख में सिमरण करे सब, सुख में करे ना कोई, अरे सुख में सिमरण करे तो दुख काय को होए, ऐसा हमारे कबीर जी बताते हैं। तो दुख होता है तो आदमी सिंसियरली हृदय पूर्वक भगवान को याद कर सकता है। तो यहां का माहौल जो है ना वो भले जन्म मृत्यु का है, भले कष्ट का है, पीड़ा का है, लेकिन भक्ति के लिए एक तरह से बहुत अनुकूल वातावरण है यहां पर, वो मनुष्य जीवन है। इसलिए 400 प्रकार के जो मनुष्य योनियां हैं, जो देवता तक लास्ट पहुंचता है 400वां हो सकता है ब्रह्मा जी, लेकिन उन सब में से भी हमारा जीवन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और हमारे जीवन जहां पर है इस पृथ्वी पर, वहीं पर भगवान आते हैं, और कहीं नहीं जाते हो, एक ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक पर आते हो, और वो सारी पृथ्वी के वो जो ब्रह्मांड के 14 लोक के जितने लोग हैं ना, वो उनको मिलने के लिए यहां पर आते हैं जहां पर हम लोग रहते हैं। इसलिए हमारा जीवन श्रेष्ठ है, और इस जीवन में देवताओं से भी अधिक लाभ लाभ और भाग्य हमको प्राप्त है। और क्या लाभ है देवताओं से हमको ऊपर? देवताओं का लाइफ जो है ना लाखों सालों का होता है, जैसे ऊपर जाएंगे वैसे बढ़ते जाएगा वो। यू कैन नॉट इमेजिन, ब्रह्मा जी का लाइफ तो बाप रे 3 trillion 11 billion ईयर्स, ब्रह्मांड का लाइफ है ना उतना ही ब्रह्मा का लाइफ है, क्योंकि ब्रह्मा जब तक है ब्रह्मांड तब तक है, ब्रह्मांड शुरू से और ब्रह्मांड का एंड तक ब्रह्मा है, इतना लाइफ है उनका। और उसके प्रपोर्शन में थोड़े थोड़े कम कम कम, लेकिन बहुत सारा हमारे से। तो जैसे कि एक चींटी के लिए मनुष्य का जीवन कैसा है, वो तो मनुष्य अमर ही है उसके लिए, चींटी के हजारों पीढ़ी आते तो मनुष्य जीवित दिखाई पड़ता है उनको, है ना, वैसे ही हमारा और देवताओं का सही है। लेकिन यहां पर इतने लंबे आयु के बदले में छोटी सी आयु है, छोटी सी आयु है, भक्ति के लिए अनुकूल है। और वृंदावन धाम भी इसी पर स्थापित किया गया है जहां पर हम लोग रहते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। इसलिए हमारा जीवन धन्य है, केवल वृंदावन धाम नहीं है, जगन्नाथपुरी भी यहां पर बसा हुआ है, अयोध्या भी यहां पर बसा हुआ है, वहां का अयोध्या, वहां की द्वारका यहां पर बसी हुई है, वहां का ब्रज यहां पर बसा हुआ है, वहां का पंडरपुर वैकुंठ जो है, द्वारका वैकुंठ, दक्षिण द्वारका यहां पर बसी हुई है, पृथ्वी पर बसी हुई है सब। तो उस पृथ्वी पर जहां भौम वृंदावन है वहां पर हम लोग विराजमान है, यहां देवता भी लालायित रहते हैं लेकिन नहीं आ सकते हैं, और हम लोग आ सकते हैं। इसलिए आचार्यगण बताते हैं कि यहां पर अगर हमको आना है तो कैसे आना चाहिए। तो LIC का एजेंट यहां पर आ गए तो क्या करेगा, सभी यात्रियों को LIC की पॉलिसी बेचने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं? बोले अच्छे 120 लोग आ गए भाई, सब लोग पकड़ो जरा, है ना, कोई अगर कुछ बेचने वाला होगा तो बेचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो काम कर रहा है तो दिल से वो वही है जहां पर था, मतलब बंबई में, है ना, जहां पर वो काम करने का उसका ऑफिस है, वही चेतना लेकर यहां पर आ गया तो उसके लिए ये वृंदावन है और नहीं भी, शरीर से आ गया वो, मन से नहीं आया। तो अगर हमको यहां पर अगर आत्मा के स्तर पर आना है तो कुछ कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे टिकट निकाल के सेकंड एसी फर्स्ट एसी थर्ड सेकंड स्लीपर और यहां पर कोई सेकंड रूम एसी रूम कर बुक करके यहां पर प्रवेश नहीं होता है, वो तो हमारा शरीर आ गया इसके अंदर। लेकिन जब तक हमारा मन और हमारी चेतना यहां पर नहीं आती है तब तक ये धाम आपके लिए प्रकट नहीं है, ये धाम आपके लिए विकसित, आपके लिए अनुभूति नहीं हो सकती उसकी आपको। इसलिए बॉम्बे से निकलते समय जब हम लोग बैग भरते हैं ना अपना, हाँ, कुछ कपड़े भरते हैं, कुछ टूथपेस्ट भरते हैं, शेविंग क्रीम भरते हैं, उसके साथ कुछ और भी तैयारियां मन की, मन के बैग में भरना चाहिए। सबसे पहली चीज है वो है नम्रता। हमारा जो भी वहां का अहंकार है कि मैं डॉक्टर हूं, फलाना हूं, रिच हूं, जो भी कुछ हूं, अधिकारी हूं, वो सारे जो मेरे बारे में मैं सोचता हूं मैं हूं, वो सब कुछ छोड़ के आना है आपको, वहां पर नंबर वन, सारी उपाधियों को छोड़कर यहां पर आना है. यू हैव टू कम एज मिस्टर नोबडी हियर. अगर हम लोग वही सब लोग सब टोपियां पहनकर यहां पर आएंगे तो जो पर्दे हैं ना वो उसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर्दे हो जाएंगे. बहुत दूर हो जाएगा वो सब, फिर स्मेल भी नहीं आएगा उस पर क्या चल रहा है. हमें आपको अपने आप को ढक रहे हैं. तो आचार्यगण बताते हैं कि सारे जो विकार है हमारे और सारे जो उपाधियां हैं जो हम अपने को समझते हैं, हमारी जो पहचान हम समझते हैं, वो सब छोड़ के यहां पर आना चाहिए. एक नम्र दास बनकर यहां पर आना चाहिए. केवल एक जानकारी रखते हुए, ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कि मैं भगवान का अंश हूं. वो जो दिव्य अखिल ब्रह्मांड नायक लीला पुरुषोत्तम परम पुरुषोत्तम भगवान है, गोलोकेश्वर जो यहां निवास कर रहे हैं, उनका मैं केवल अंश हूं और उनका कृपा प्राप्त करने के लिए आया हूं. बस ये भाव रख के आना चाहिए. यहां पर इतने भगवान के उच्च भक्त रहते हैं, कभी हम उनको पहचान ही नहीं पाएंगे. ऐसे भक्त रहते हैं. इस शहर में कोई बड़ा आदमी होगा ना तो उसको देख के हम पहचानेंगे बड़ा आदमी है उसको. अगर वो गाड़ी में भी नहीं आएगा, अपने सामने चलते आएगा, तो आपको लगेगा ये रिच मैन है, उसके अंदर एक कुछ होता है तेज. यहां के जो व्यक्ति है वो ऐसे धनी है कि उनका धन आपको कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, उनका धन हृदय में छिपा हुआ है. जो थोड़ा बहुत वो टाइप का धन जिसके पास है वही उसको पहचानेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है बहुत धनी है. यहाँ का कौन सा धन है? वो आध्यात्मिक धन, भक्ति का धन, प्रेम का धन, भगवान के प्रति आसक्ति का धन जो है वो यहां पर प्रचुर मात्रा में अनंत लोगों के हृदय में है. इस रिक्शा वाला यहां का है समझो, वो आपको चीटिंग करेगा, वो 10 के बदले में 50 बोलेगा आपको सीजन के टाइम पे. कुछ भी दुकानदार चीटिंग करेगा आपको, आप लोग क्या है ये सब. लेकिन वो सारे लोग भगवान के ऐसे प्रिय लोग हैं जिनका हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं. क्योंकि यहां पर जन्म प्राप्त करने के लिए कई हजारों जन्म तक बाहर पुण्य करना पड़ता है. राधा रानी और कृष्ण भगवान की मर्जी संपादन करनी पड़ती है. जब उनको लगेगा कि हाँ भाई इन्होंने इतना पुण्य कार्य किया है, मेरी सेवा में प्रयास किया है, मेरे भक्तों का हेल्प किया है, हाँ बाहर बाहर देशों में, तो अगर उतनी पूंजी इकट्ठा हो गई तो फिर यहां पर जन्म हो सकता है. नंबर वन, सब लोग यहां पर जन्म ले सकते नहीं है. बाय द वे हम लोग कितना लोगों को देखते हैं यहां पर, भक्त लोग आते हैं और प्रेगनेंसी भी यहां पर करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन डिलीवरी बाहर हो जाती है उनकी. मैंने कई लोगों को देखा है. तो यहां पर ऐसा कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते कि भाई परिवार को लेके आएंगे फिर यहां प्रेगनेंसी होगी, यहां डिलीवरी होगी. सबकी नहीं होती है, बहुत लोगों का कुछ ना कुछ होता है गड़बड़, फिर शहर में भागना पड़ता है और डिलीवरी वहां जाती. कई लोग यहां पर आते हैं ये सोच करके हम मरेंगे यहां पर, भाई बुढ़ापा हो गया तो यहां पर आकर बसेंगे. ये शास्त्र का विधान भी है कि धाम में आके रहना चाहिए शरीर समाप्ति के समय. लेकिन मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है 30-30 साल यहां रह चुके हैं, सब परिवार बिजनेस सब कुछ छोड़कर यहीं पर एक तपस्वी जीवन जी रहे हैं. लेकिन मौत के समय मलेरिया हो गया, ब्लैक वाटर फीवर हो गया, सेरेब्रल मलेरिया हो गया, दिमाग में गया फीवर, तो दिल्ली चले गए, वहीं डेथ हो गया. 30 साल यहां पर रहने के बाद सोचो, एक नहीं मैं कई आदमी को गिना सकता हूं आपको. एक हमारे वो थे असीम कृष्ण प्रभु महाराज के, असीम परम मित्र थे वो. वो तो पूरी जिंदगी यही रहते थे वो, 6 महीना हम्पी में, 6 महीना वृद्ध में, ऐसा वीजा था उनका, रिसर्च वीजा था उनके पास. इतने अच्छे भक्त थे वो, भगवत धाम जरूर गए होंगे. लेकिन मैं बता रहा हूं आपको एक बता रहा हूं स्टोरी कि हमारी योजना करने से यहां पर बर्थ और डेथ नहीं होता है. यहां पर योग्यता होनी चाहिए, प्लानिंग करके यहां पर डेथ और बर्थ नहीं होता है, ठाकुर जी की इच्छा से होता है. और वो उसकी जो योग्यता है वो वही जानते हैं कि किस व्यक्ति को यहां पर ये देना है भाग्य. तो ये वस्तु जो है समझना बहुत जरूरी है. तो यहां पर वो व्यक्ति आ सकता है जिसकी भावना उसकी योग्य है. और दूसरे प्रकार के लोग हैं यहां पर जो बाहर जन्म लेके यहां पर रहते हैं, है ना. एक ब्रिजवासी वो है, वो जन्म यहां पर हुआ है. एक वो है जो अभी बिजनेस वर्क कर लिया सब कुछ, यहां पर ही जगह ले लिया, यहां पर ही परमानेंट शिफ्ट हो गया वो, तो यहां पर रह रहा है. और थर्ड टाइप के लोग हैं हमारे जैसे, तो हम लोग कुछ दिन के लिए आते हैं चले जाते हैं, यात्रा करके चले जाते हैं. हम भी धामवासी हैं उस समय के लिए. और तीनों प्रकार का धामवास जो है बहुत पावरफुल है. लेकिन तीनों प्रकार के धामवास में अगर सही चेतना नहीं है तो सही लाभ आपको नहीं होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं. हम भी धामवास है, और ये धामवास एक क्षण का हो, 10 दिन का हो, 10 साल का हो, या जन्म भर का हो, वो धामवास भगवत धाम में पहुंचाने के लिए समर्थ है आपको. ये धामवास यहां का जो है छोटा मोटा जो भी हो, वो आपको सीधे गौलोक धाम पहुंचाने में समर्थ है, इतनी शक्ति है यहां के निवास में। लेकिन चेतना सही होनी चाहिए। वो चेतना में यहां पर आकर ये नहीं करना है कि भगवान मैं आपके एक परिक्रमा करूंगा गिरिराज जी की, थोड़ा बंगला दिला देना बंबई में, बहुत दिन से अटका हुआ है। ऐसा अगर मन में कुछ सोच के आएंगे ना गणित, तो यहां पर नहीं चलेगा। और वो मिलेगा भी आपको, ले लो बंगला ले लो गाड़ी दो सब जो चाहिए ले लो, लेकिन मेरी प्राप्ति नहीं होगी आपको, ऐसे भगवान बोलेंगे। यहां पर आकर केवल भगवान को अनन्य अगर आप चाहेंगे, कुछ भी ना चाहते हुए अनन्य चिंतयन्तु माम योजना पर्युपासते, वो अगर भाव रहेगा तो आपको कोई चीज की इच्छा नहीं होगी और आप केवल भगवान को चाहेंगे और भगवान मिल भी जाएंगे आप। इसलिए उद्धव जी, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ के इतने लोग इतने श्रेष्ठ भावना में रहते हैं और वो हम पहचान भी नहीं पाएंगे उनको, इतने ऑर्डिनरी दिखते हैं। वैसी गोपियां थी यहां पर, गंवार औरतें थी, और उद्धव जी महाराज कौन थे, वो बृहस्पति के शिष्य थे। भगवान जैसा उनका शरीर था, भगवान जैसे उसके शरीर के तेवर थे, भगवान का भाई था, भगवान का मित्र था, भगवान का मंत्री था, भगवान का सलाहकार था, उठना बैठना खाना पीना हंसी मजाक शिकार सब भगवान के साथ खेलता था वो। इतना निकट और किसी को भगवान के पास पहुंचने की और कोई है नहीं, और स्थान कोई उद्धव जी के ऊपर और भगवान के पास जाने का प्रयास कैसे करेगा, उसके ऊपर कोई ऐसा और नजदीक कोई स्थान नहीं है उनका, इतना भगवान के नजदीक थे वो उद्धव जी महाराज। और वो सब जो समझ करके मैं ज्ञानी हूं, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं और मैं योग जानता हूं, और सब कुछ सोचकर वो भगवान ने उनको भेजा था कि भाई गोपियों बहुत रो रही है, उनको जरा सांत्वना करके आओ, मेरा खत भी दे दो और थोड़ा उनको जरा दिल शांत करके आओ। तो वो अपने बुद्धि के स्तर पर योजना बना रहे कि मैं उनको योग सिखाऊंगा, मैं उनका मन शांत करूंगा, मैं उनको प्राणायाम सिखाऊंगा वगैरह वगैरह, अपनी तरफ सोच रहा है वो बेचारा। लेकिन जब गोपियों का प्रेम देखा उन्होंने, तो इतना उनको संकोच हुआ मन में कि मैं क्या सोचकर आया था, और मैं अरे एक फॉर एग्जाम्पल वो मैं हम लोग योग करते हैं ना, योग उसमें ध्यान करते हैं और भगवान को ध्यान में पकड़ने का प्रयास करते हैं ना, व्हाट वी डू कि वो चतुर्भुज शिरोधकशायी विष्णु परमात्मा जो हृदय में विराजमान है, उसको हृदय में हम लोग ध्यान से पकड़ना चाहते हैं, उन पर ध्यान करना चाहते हैं, वो नहीं आते लेकिन हम उनको पकड़ना चाहते हैं और उनको बिछाना चाहते हैं हृदय में। वो आते हैं और क्या देखते हैं, गोपियां बैठी है सब ध्यान पे, यमुना किनारे बैठी है, तो पहले से योग कर रही है, मैं क्या सिखाऊंगा उनको, पहले से योग कर रही है, बोले पूछे पूछ रहे पूछता हूं क्या कर रही है। तो कहते हैं हम लोग योग इसलिए कर रहे हैं जो हृदय में बस गया है ना उसको निकालना चाहते हैं हम। वो जब हमारा हृदय बहुत सीधा था लेकिन ये टेढ़े थे, जब हृदय में बसा लिया तो उनको एडजस्ट करने के लिए हृदय भी टेढ़ा कर दिया हमने अपना, तभी ऐसे हृदय में फंस गए वो कि हम उनको हृदय से निकालना चाहते हैं, उनको भूल जाना चाहते हैं, उनको छोड़ के चले गए यहां से, हम उनको याद भी नहीं करना चाहते। वो ऐसे प्रेमी हैं जो धोखा देकर चले गए हैं, हाँ कल आता हूं परसों आता हूं बोल के चले गए, तो नहीं साल हो गए नहीं आ रहे, इसलिए हम अभी उनको भूल जाना चाहते हैं। तो उद्धव जी बोलते हैं ऐसा योग तो मैंने सीखा नहीं, जिसके हृदय में कृष्ण बसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए योग किया जा रहा है। वहीं पर उसकी विकेट गिर गई सबसे पहली, फर्स्ट इंटरेक्शन। फिर उसके बाद में वो सुन रहे वो क्या बोल रहे हैं, वो उनको लग रहा है बाप रे ये तो बहुत बड़ा मामला है, ये हमारे बस की बात नहीं, मैं तो कृष्ण के साथ उठता हूं बैठता हूं विनोद करता हूं हास प्रयास करता हूं खाता पीता हूं क्या जूठन खाता हूं सब कुछ करता हूं, लेकिन ये कुछ अलग चीज है, इतनी दूर रहते हैं भगवान से ये, लेकिन इनके अंदर जो भगवान के प्रति निकटता और भाव है वो मेरे भगवान को पास में रहकर भी नहीं है। तो बहुत सोचा उसने, वो कुछ उनको बोल ही नहीं पाया, बताओ उनको वो कुछ प्रचार या कुछ सांत्वना या कुछ काउंसलिंग परामर्श समुपदेशन कुछ नहीं कर सका वो। फिर वही बोलने लगी भगवान के विषय में, केवल सुनता रहा बस। ऐसी यात्रा हुई, देखो अभी भी आपकी यात्रा में एक आध दो बोलने वाले होंगे, चार पांच लोग, और 120 लोग सुनने वाले हैं, कभी कभी महाराज जी एक बोलने वाले होते हैं और 5000 लोग सुनने वाले होते हैं। यात्रा हमेशा ऐसे होती है ना, एक आध दो वक्ता होते हैं और बहुत सारे लोग सुनते हैं। अरे ये तो ऐसी अद्भुत यात्रा थी, इसके अंदर करोड़ों गोपियां बोल रही है और अलग अलग जगह पे उनको लेके जा रही है, यहां पर ऐसे हुआ था, यहां पर वस्त्रहरण हुआ था, यहां पर किसी को मारा था, यहां पर गोचारण हुआ था, यहां पर ये हुआ था, यहां पर गिरिराज धारण किया था, यहां पर गोविंद कुंड बना हुआ है, और सब जगह सब गोपियां कहानी बता रही है। मतलब क्या हो रही है, ऐसी यात्रा हो रही है धाम वृंदावन की, एक श्रोता अनंत वक्ता, ऐसी अद्भुत यात्रा हो गई वो। और हमारी यात्रा कितने दिन की है? 7 दिन की। गणपति की छुट्टी है, शनिवार रविवार भी छुट्टी है, शनिवार को निकले, रविवार का पहुंचे, अगले रविवार का शाम तक पहुंच जाना है, संडे को वापस, मंडे को ड्यूटी पर जाना है। 7 दिन की यात्रा है, 6 महीने की यात्रा चलती रही, 6 महीना सुबह से लेकर रात तक, एब्सॉर्प्शन कंप्लीटली, सब बोल रहे हैं। और उद्धव जी का एक ही नतीजा निकला उसमें से कि इनके हर एक गोपी के अंदर इतना भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति भाव है कि इसका मैं एक कण भी कभी सोच नहीं सकता कि मेरे पास आ सकता है या मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है, ये उसको अनुभूति हुई है। मतलब क्या हुआ, जो ये स्थान पर था भौतिक दृष्टि से, वो सोच कर आया था कि मैं यहां पर हूं, वो सीधे जमीन पर आ गया। ये सब कुछ है, सत्य है, वो जमीन पर आने के बाद भी वो सत्य है कि भगवान का मित्र है, भगवान जैसा ही शरीर है, भगवान का भाई है, भगवान का सलाहकार है, मंत्री है, सब कुछ सही है, भगवान के रथ पर बैठकर आया हुआ है, ये सब कुछ सही होते हुए भी चेतना के स्तर पर वो यहां से लेकर जमीन पर आ गया। और फिर इस स्तर पर आकर उन्होंने सारे गोपियों का संग लिया, उनके प्रेम का अनुभव किया उनके कथन के द्वारा, और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे अभी इनके चरणों की रज की जरूरत है, बिना इनके चरणों के रज प्राप्त किए बिना मैं इनके भाव का एक कण भी स्वीकार नहीं कर सकता, ना मुझे मिल सकता है। अभी अगर मैं उनसे मांगू कि आपके चरणों के रज दो, तो बड़ा संकोच करेंगे, अरे आप तो बड़े महामंत्री हो, द्वारका से आए हो, तो संकोच होगा उनको, मतलब मांगना भी ऐसी चीज है जो आप नहीं सकते नहीं आपको। हाँ, कोई पत्नी को पति बोले कि मैं आपके चरण छूना चाहता हूं, तो पत्नी का कितना संकोच होगा, वैसे कुछ उनके मन में संकोच हो रहा है कि ये तो इतने बड़े आदमी है, राजा की तरफ से आए हैं, तो वो ये भी चाहते नहीं कि ऐसे महान भक्तों को मैं संकोच भी दे दूं, आई डोंट वॉन्ट टू इवन एम्बेरेस देम। तो एक ही तरीका है, अभी सामने से मांग नहीं सकते उनको संकोच के लिए, तो मैं अभी क्या करूंगा, तपस्या करूंगा और तृण का पत्ता बनूंगा, क्योंकि मैंने देखा है जब यात्रा चल रही थी ये तृण के ऊपर से आसानी से चल रहे थे, कोई संकोच कभी हुआ नहीं उनको, तृण के पत्ते पर उनको चलने में कोई आसानी नहीं, घास पर चलने में, तो मैं घास का पत्ता बनूंगा फिर ये आराम से मेरे ऊपर चलेगी, तो आराम से मतलब बिना संकोच के उनकी रज मुझे मिलेगी, तब मेरे जीवन की परिपूर्णता होगी। ये कौन सोच रहा है, जो सर्वोच्च पद पर पहुंच चुका है भगवान के सानिध्य में, वो व्यक्ति सोच रहा है, और क्यों सोच नहीं रहा है, गया वापस और वापस ब्रज में आया है वो। उद्धव जी महाराज ब्रज में आए दोबारा और कुसुम सरोवर के किनारे उद्धव कुंड पे तपस्या किया, घोर तपस्या उन्होंने। हमारे दुनिया में सब लोग तपस्या क्यों करते हैं, तपस्या का मतलब क्या है कि ये छोड़ना वो छोड़ना क्यों करते हैं, किसी अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए, है ना भाई। 12वीं का लड़का जो है उसको MHCET देना है, ये देना है, वो देना है, तो वो टीवी देखना बंद करेगा, मोबाइल व्हाट्सएप सब मम्मी को दे देगा, कुछ टीवी सब बंद, अभी केवल मैं पढ़ाई करूंगा, बच्चे लोग बुला रहे हैं चलो समुद्र में घूमने चलेंगे, यहाँ पिकनिक जाएंगे, बोला नो इस साल में कुछ नहीं, केवल एग्जाम देना है मुझे। तो कुछ ऊंची वस्तु, प्रमोशन, ऊंची जगह पर जाने के लिए लोग कुछ चीज को त्याग कर देते हैं, छोटी चीज को, तपस्या हम लोग इसको कह सकते हैं। तपस्या का डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन उद्धव जी महाराज एक सर्वोच्च पद पर है, उससे वो तृण का पत्ता बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं, उल्टी तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि ये भूमि और यहां का महात्म्य ऐसा ही है, पूर्ण भौतिक दुनिया से विपरीत है यहां का सब चीज। भौतिक दुनिया में जो चीज होती है जिस प्रकार से हम सोचते हैं, उससे पूर्ण विपरीत सोच यहां पर है, इसलिए ये ब्रज धाम है। तो वो उन्होंने कड़ी तपस्या की, उसके बाद में उन्होंने गुल्मलता नाम के विशेष प्रकार के घास का रूप धारण किया, और आज भी वो कुसुम सरोवर के किनारे पे गुल्मलता के रूप में विराजमान है, तब भी विराजमान है, और वो उनकी रज लेकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। फिर जब कृष्ण की पत्नियां जब दुखी हो गई, कृष्ण भगवान अंतर्धान होने के पश्चात, तो वो परीक्षित महाराज और बज्रनाभ जी उनको लेकर आए ब्रज में, भगवान की उन्होंने बताया था भगवान में कि ऐसे करना आपको, तो सारी पत्नियां यहां पर आई भगवान की, तो वो प्रकट हो गए, उनको उन्होंने भागवत सुनाया और श्री कृष्ण की पत्नियों को यहीं से उन्होंने गोलोक धाम भेज दिया उद्धव जी महाराज। तो ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि इतना बड़ा आदमी भी जो भगवान का ऑलरेडी परम भक्त बन चुका है, परम सान्निध्य में है, वो भी यहां पर आकर उसने तृण का पत्ता, घास का पत्ता बनने के लिए तपस्या किया है, तब जाकर कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। हम अपनी टोपियां पहने रहेंगे, हम लोग क्या है, ये है, वो है, तो कैसे कृष्ण प्राप्त होंगे। इसलिए सब लोगों को यहां पर जैसे अक्रूर जी आए थे वृंदावन में वैसे आना चाहिए। अक्रूर जी रथ में बैठकर आए, हाँ भगवान वो लेने, भगवान को लेने के लिए उन्होंने कंस ने भेजा था उनको, जाओ उनको कैसे भी घुमा फिरा के लेके आओ धनुर्युद्ध के लिए, तो रथ में बैठकर आए। लेकिन जैसे ही जमुना जी किनारे पहुंचे, मतलब जैसे ब्रज का आरंभ हुआ, तो वो तुरंत रथ से उतर गए और लोटपोट हो गए। ही रोल्ड इन द डस्ट ऑफ वृंदावन। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह देखे। तुरंत अपना पद वद जो था उनका, जो पोजीशन था वो छोड़ के जमीन पर लेट गए वो, और रज में लोटपोट हो गए। क्योंकि सारे ग्वाल बालों का और सारे गायों का ये निश्चय था, ये रेजोल्यूशन था उनका कि कभी भी हम कृष्ण बलराम के चरणों पर अपना पैर रखेंगे नहीं, उसको मिटाएंगे नहीं। क्योंकि ब्रज भूमि का एक अलंकार है वो कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह, वो सभी जैसे यहाँ की रज जो है वो इतनी बटर की ताजा, बटर से भी अधिक मुलायम है, उस पर यहाँ की गायें जो है वो जब चरती है ना वो, तभी उनके मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम होता है कि उनके थन जो है वो इतने दूध से भरे होते हैं, दूध टपकते रहता है भगवान की याद से, केवल भगवान के स्मरण से इतनी संपृक्त है वो, कॉन्सेंट्रेटेड है भगवान के प्रेम से यहाँ की गायें भी, कि हमेशा उनकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं प्रेम के भगवान की याद में, और थन से बूंद बूंद जो है शीतल मधुर दूध जो है टपकते रहता है। वो जब वो रज से मिलता है जो पाउडर के समान है, वो एक मुलायम मक्खन की तरह बन जाता है ठंडा, और उसमें भगवान कृष्ण भगवान चलते हैं गौचारण करते करते, वो उसके चरण चिन्ह जो है उनके दिव्य चिन्हों के साथ में प्रकट हो जाते हैं, और उस पर कोई पाँव नहीं रखता है। तो सारे ब्रज में ऐसे चरण चिन्ह भरे हुए हैं, और वो जब अक्रूर जी देखते हैं तुरंत उसमें लोटपोट हो जाते हैं। सारे लोग यहां पर आते हैं भगवान के चरण की धूल प्राप्त करने के लिए, और हम लोग क्या करते हैं जब बैठते हैं तो झटकते हैं। ये दामोदर कुंड है, यहां पर दामोदर कुंड जो वृंदावन में है, वहां पर भगवान ने एक बार ग्वाल बालों को बचाने के लिए आग को पी लिया था, तो दामोदर पान कहते हैं दामोदर कुंड। तो वहां पर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का एक प्रवचन चल रहा था, तो उसमें कुछ भक्त लोग बैठे थे, उन्होंने अच्छा प्रवचन दिया। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो सब लोग उठकर अपना शरीर झटकने लगे, तो गौरकोशी महाराज ने कहा आप सब लोग मूर्ख हो, आपको पता नहीं है सारे वैकुंठ का ऐश्वर्य लाने के बाद भी यहाँ का एक कर्ण आप खरीद नहीं सकते हो, इस कर्ण के लिए, ये कर्ण जो है सारे प्रेम भक्ति का रहस्य इसमें छुपा हुआ है, इस कर्ण को प्राप्त करने से आप प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हो, वो कर्ण आपके अनंत मात्रा में शरीर में पड़े हुए आप झटक रहे हो उसको। हम बोलेंगे नहीं, इसमें बहुत बैक्टीरिया होते हैं, बहुत स्पोर्स भी होते हैं, टिटनस के स्पोर भी उसके अंदर होते हैं, ऐसा हम लोग अपना मेडिकल नॉलेज लगा सकते हैं उसके अंदर, लेकिन ये रज जो यहाँ की है वो आपको प्रेमा भक्ति दे सकती है। और वो रज जब संतों के हृदय में पैरों में लगती है, जैसे गोपियों के चरण में लगकर जब प्राप्त होती है आपको, तो गोपियों का भाव भी उस चरण रज के माध्यम से हमको प्राप्त होता है। भगवान की और भगवान के भक्तों की रज जो है बहुत पावरफुल है। वो राम भगवान ने जब पत्थर पे पैर रखा तो वो देवी प्रकट हो गई अहिल्या देवी, इतनी शक्ति है भगवान के चरण के रज में, उतनी ज्यादा शक्ति, उसकी ज्यादा शक्ति भगवान के भक्तों के चरण रज में होती। तो ये भूमि वो भूमि है जहां पर सारी गोपियों ने स्वच्छंद विहार किया है, भगवान के सारी गायों ने स्वच्छंद विहार किया है, भगवान के मोर, भगवान के तोता, भगवान के जितने पंछी, खरगोश, जितने भैंसे, जितने बकरियां, जितने भगवान के जानवर थे, सब सखा वृंद थे, सखियां वृंद थे, माता पिता जितने ब्रजवासी थे, सबने इसमें विचरण किया है। इनके चरण रस स्पर्श से यहाँ के रज जो है पुनीत हो गई है, यही भूमि है वो, और उसमें हम लोग आए हैं। यहाँ का जो हवा है ना, हवा, एक बार मैं हमारे गुरुजी के साथ में एक यहाँ पर एक कोठी में हम लोग रहते थे उस समय, अभी तो नहीं है वो, तो वहां पर हम लोग दिन में जप कर रहे थे, हम ऐसे चल रहे थे उसके अंदर, थोड़ा बगीचा वगैरह है, मैं भी चल रहा था, तो मैं रुक गया, महाराज ने बोला रुक जाओ, तो मैं रुक गया, हम दोनों रुक गए। मैं समझा नहीं क्यों रुका है मुझे, बोला अभी महसूस करो क्या हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, मैंने कहा हवा आ रही है। कहते हैं महाराज ने बोला कि मैंने रुका है इसलिए आपको, क्योंकि यहां की जब हवा आती है आपके ऊपर, इसका मतलब कृष्ण आपको आलिंगन दे रहे हैं, आपको महसूस करना चाहिए, उसकी अनुभूति करना चाहिए कि हवा के माध्यम से आपको श्री कृष्ण भगवान आलिंगन दे रहे हैं, इसलिए अभी आंखें बंद करो और महसूस करो कि आपको कृष्ण आलिंगन दे रहे हैं। यहाँ की हवा का महत्व है, यहाँ का जल जो आप पीते हो, उस सारे रसों का सार है। रस की जो निर्मिति है, रस यानी भगवान के प्रेम में एक संपृक्त अनुभव होता है, वो दोस्ती का होता है या वात्सल्य का होता है, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति का एक संपृक्त अनुभव है अलग प्रकार का। वो रस जो है वो राधा रानी के द्वारा निर्माण होता है और वो रस इस धाम में खचाखच भरा हुआ है। और जब आप जल प्राप्त करते हो, प्रसाद खाते हो, तो उस रस को आप ग्रहण कर रहे हो। लेकिन क्या हम सोचते हैं ऐसा? हम बोलते हैं कि सब्जी जली हुई है, गुलाब जाम बराबर पका नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम सब लोग सोचेंगे अभी अभी से आगे या कल से जब से भी कि ये जो हम पा रहे हैं, जो पी रहे हैं, ये रस का सार है और वो बहुत दिव्य प्राप्ति है जो देवताओं को और ब्रह्मा जी को भी नहीं होती है, वो हमें हो रही है। अगर ऐसा सोचकर आप प्रसाद पाएंगे तो आपको कितना लाभ होगा इसके अंदर। यहाँ की हर वस्तु जो है, यहाँ का जल, यहाँ का हवा, यहाँ की रज, यहाँ का वास्तव्य बहुत पावरफुल है। इसलिए कि पावरफुल है क्योंकि वो आपको साक्षात कृष्ण की प्राप्ति कर दे सकता है। इसलिए सबसे बहुत जरूरी ये चीज है कि रजोगुण और तमोगुण छोड़ के यहां पर आना चाहिए। ये सोचकर नहीं आना चाहिए कि मुझे लोही बाजार जाना है, ये मुझे टिक्की खानी है बांके बिहारी की, वहां की लस्सी पीनी है, बहुत बढ़िया होती है, हमने सुना है इसके बारे में, वहां का चाट बहुत बढ़िया होता है, ऐसे हम लोग सब सोच के आते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत खाओ, उसको खा सकते हो, लेकिन उससे भी कई ऊंची प्राप्ति यहां पर होने वाली है और हो सकती है, ये भूलना मत उसको। यहां पर आपको जब तक कोई भौतिक इच्छाओं को लेकर हम आते हैं तब तक आप जो प्राप्त कर सकते हैं उससे आप दूर हो जाते हैं, अपने आप दूर कर रहे हैं अपने आप। यहां पर केवल एक ही इच्छा लेकर आओ कि मुझे भगवान चाहिए। और यहां पर आचार्य बताते हैं कि हमको भगवान के चरणों में शरणागत होने के लिए यहां पर आना चाहिए, टू टेक शेल्टर ऑफ श्री कृष्णा एंड राधा रानी, इसलिए यहां पर आना चाहिए और किसी भी अन्य उद्देश्य से नहीं आना चाहिए। और एक बहुत बड़ी भी चीज बताते हैं आचार्य लोग कि यहां पर किसी भोग लेने के लिए यहां पर नहीं आना चाहिए, जितना हो सके यहां पर सिंपल रहना चाहिए। सारी हमारी सुविधाओं को लेकर हम यहां रहेंगे तो वातावरण कैसे पैदा करेंगे? जैसे हमारे घर का वातावरण है जहां पर हम लोग हर प्रकार का आनंद अच्छी तरह से लेते हैं, हमारा बाथरूम, हमारा बेडरूम, हमारा सब कुछ एकदम जगह पर होता है, बेस्ट चीज हम लोग जो सब जगह लेके जा सकते नहीं, लेकिन घर पे सब लोग सब चीज होती है ना, तो वो सारा चीज छोड़कर हम लोग यात्रा में आना चाहिए। या जैसे हम लोग हमारे घर पे रहते हैं, साल भर रहते हैं, वहां पर बहुत सारी सुविधाएं सब कुछ है। यात्रा का मतलब क्या है? वो सारा जो हमारा हैबिट है वहां पर सुविधा पूर्वक रहने का, उसको त्याग करके हम लोग जानबूझकर कुछ असुविधा पूर्वक चीजों को स्वीकार कर लेते हैं। चलो हमारा रूम यहाँ का जो है वो अपने घर जैसा नहीं है, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमारे घर जैसा वातावरण यहाँ पर नहीं है, पर इतनी गर्मी होती है, इतना ठंड होती है, इतना क्या क्या होते रहता है, यहाँ पर बहुत चीजें हैं जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन उन सब लोगों को, सब चीजों को मन से स्वीकार करके हमको यहाँ पर आना चाहिए, जानबूझकर, ये जानते हुए कि ऐसा होगा लेकिन हमको मंजूर है ये, क्योंकि कुछ खोकर ही कुछ पाना मुमकिन होता है लाइफ में। सब कुछ रखकर सब कुछ पा नहीं सकते हैं, कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ चीजों को खोना पड़ता है। तो अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमको वो सारी जो हमारी इंद्रियों को सुविधा की आदत लग गई ना, वो यहां पर कुछ समय के लिए कम से कम छोड़ना चाहिए। हो सकता है हमारे घर जैसा भोजन जो है, जो हमारी बीवी बनाती है, माँ बनाती है, वो आपको यहां पर नहीं मिले शायद, लेकिन जो मिल रहा है वो कृष्ण प्रसाद मिल रहा है, हमारी पसंद का नहीं होगा शायद, वो हमारी सब्जी पसंद की नहीं होगी, लेकिन कृष्ण प्रसाद वृंदावन धाम का प्राप्त हो रहा है, रसों का सार हो रहा है, इसलिए वो सारी भौतिक जो उसमें अंडरस्टैंडिंग है उसको त्याग करके उसको बड़ी कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए आचार्य बताते हैं एक और गुण हमको यहां पर जरूरी है, वो है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, उसको लेकर यहां पर आना चाहिए। यहां पर आकर कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, क्या प्रभु जी वो बस की व्यवस्था सही नहीं थी, प्रभु जी क्या उधर बारिश आ गई, वो दर्शन नहीं हुआ, प्रभु जी यहां पर सब्जी खाना बिना इतना परेशान हो गया, ये रोटी नहीं मिलती है और चावल नहीं मिलता है, वो सांभर नहीं मिला कितने दिन से, बोर हो गया अभी घर की याद आ रही, चलो घर चलते हैं अभी ऐसा होता है क्या? तो ऐसे होता है कि अरे प्रभु जी हमने इतना प्लानिंग किया था लेकिन ये जगह तो पहुंचे नहीं पाए, क्या प्रभु जी कुछ लोग इतने आलसी थे और लेट चलते थे और कुछ लोग फास्ट चलते थे और हम लोग इतने उत्साहित थे लेकिन ये लोग आलसी थे इसलिए हमारा चार दर्शन कैंसिल हो गए। एक यहां पर एक होता है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं। 1994 में मैंने और राज बिहारी प्रभु जी ने एक पूरी यात्रा ऑर्गेनाइज की थी वृंदावन धाम की, उसमें 425 लोग थे। उसके जमाने में 425 यानी बहुत बड़ा नंबर था, 8 बसें थी यानी कि लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन। आज राधाकुंड प्रभु मुझे बोल के हंसेंगे, अरे क्या 425 की बात कर रहे हैं, 5,000 लोग की यात्रा आती है आजकल, लेकिन उस जमाने में 425 बहुत बड़ा नंबर था। उस यात्रा का आयोजक मैं था, तो उधर वॉकी टॉकी नहीं था, कुछ नहीं था, 8 बसें थी, हर बस को जाके बोलना पड़ता था, चालू करो, भागना पड़ता था, और फिर पहले बस में बैठना पड़ता था, फिर उतरना पड़ता था, फिर जाना, फिर टर्न मोड पे, फिर उतरना, फिर गाइड करना, ऐसे इस प्रकार की यात्रा थी। और बहुत सारी प्लानिंग बना कर रखी थी, ये सब दिखाना है उनको। तो लास्ट डे हो गया और हम लोग सारी यात्रा समाप्त करके हम लौट के आ रहे हैं फोगला आश्रम में। तो राधानाथ महाराज हमारे हमारे बस में आ गए, जहां पर मैं था, मेरे बाजू में आके बैठ गए और मुझे बोले, तो ईश्वर कैसी थी यात्रा? तो मेरा मैनेजमेंट मैन क्या बोल रहा है कि महाराज, अगर सब लोग ने अच्छा कॉपरेट किया होता ना, तो हम लोग वो भी सारे स्थान जा चुके होते। तो महाराज बहुत गंभीर हो गए, बिकेम वेरी सीरियस, सेड आपको ऐसे कभी भी सोचना नहीं चाहिए। तो क्यों महाराज, अभी इतना प्लानिंग तो किया था, अगर लोग सब समय पर आते और कॉपरेट करते तो उनका ही लाभ होता ना इसके अंदर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। महाराज ने कहा, आप भगवान के घर पे आए हो, और किसी के घर पे आने के बाद में घर के कौन से हिस्से आपके दिखाने हैं, ये घर वाले की मर्जी पे होता है। अब वो आपके घर पे आ गया तो मुझे कौन से बेडरूम में सुलाना है, ये आप लोग तय करते हैं, मैं तय करता नहीं। बोले कि आपका बेडरूम खाली करो, मुझे वहां सोना है, ऐसे नहीं बोल सकता ना मैं। ये बड़ा बेडरूम आपने अपने के लिए को रखा है, आप खाली करो, इधर सो जाओ, मैं आज यहां सोना है, केवल एक दिन के लिए, ज्यादा दिन नहीं हूं मैं। एक एटिकेट और प्रिंसिपल क्या होता है, जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो घर का जो यजमान है वो तय करता है आपको क्या खिलाना है, कहाँ सुलाना है, हाँ क्या क्या रखना है बाथरूम में, क्या क्या आपको देना है, किस गाड़ी से उठाना है आपको, किस गाड़ी से ड्रॉप करना है, ये सब वो प्लानिंग करता है। हम खाली बताते कि आ रहे हैं, हम बस मंजूर है तो फिर वो सब प्लानिंग करते हैं। तो हम जाकर वो गुस्सा की नहीं करते कि उनके घर पे ऐसा क्यों रखा, मुझे वो क्यों रखा, वो लाल रंग की चादर क्यों नहीं दिया, मुझे पीले रंग की चादर क्यों दिया, ऐसा हम लोग डिमांड नहीं कर सकते। उनकी जैसी इच्छा है वैसे हम रहते हैं और ऊपर से धन्यवाद करके कृतज्ञ भाव से लौटते हैं। तो आप वहां जाकर डिमांड कर सकते नहीं ना, उसी तरह से आप वृंदावन धाम में आ रहे हो, भगवान का घर है ये, निज धाम है उनका ये। इस धाम में, इस यात्रा में आपके चेतना के अनुसार आपको क्या क्या दिखाना है वो भगवान तय करेंगे। हम लोग भले कितनी प्लानिंग मुंबई में करेंगे, लेकिन आखिर में होगा वही जो भगवान के द्वारा सैंक्शन होगा। इसलिए ये जानते हुए, ये जानना भी एक चेतना होती है, उसको उस जानकारी में हमको यहां पर आना चाहिए। हमने प्लानिंग तो बहुत सारा किया है, लेकिन दिखाए वही दिखाएंगे वही भगवान जो उनको हमें दिखाना होगा। और जो भी अपने घर का हिस्सा दिखाएंगे उसके लिए आपको कंप्लेंट नहीं करना है, धन्यवाद ही करना है, क्योंकि इस धाम में आने की हमारी योग्यता पहले से है ही नहीं। वो आ रहे हैं, हम लोग रह भी रहे हैं, कुछ दिखा भी रहे हैं हमको, देखो यहां पर मैंने मटकी फोड़ी थी, यहां पर मैंने कंस को मारा था, ये सब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी दिव्य जगह आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा भाग्य होना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि हमारा भाग्य है। और अब जब भाग्य समझते हैं तभी हम कृतज्ञ हो सकते ना। इफ यू फील यू डिजर्व एंड यू कांट बी ग्रेटफुल, इफ यू फील यू डिजर्व गुलाब जामुन एंड यू डोंट गेट गुलाब जामुन यू फील गेट एंग्री। अगर आपको लगता है कि गुलाब जामुन को तो खाने की मेरी योग्यता तो है नहीं, भाई रोटी मिलेगी तो अच्छा है, और आप गुलाब जामुन देंगे तो बोले थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मैं तो आपका कितना ऋणी हूं, जो दाल चावल खाने के लिए आया था, आप जो गुलाब जामुन पंच पकवान खिलाए, मैं आपका जन्म जन्मांतर का ऋणी हूं। ऐसा कब भावना होगी? जब आप नम्र होंगे और अपने आप को वो योग्य नहीं समझेंगे उसके लिए। तो यहां पर आने के लिए कृतज्ञता बहुत जरूरी है। जो भी मिले, समझो बहुत भयंकर तूफान आया अभी कल से, बहुत बारिश हो गई, सब ट्रांसपोर्ट सब कैंसिल हो गए और आप कहीं नहीं गए, खाली इस कमरे में बैठे यहां पर और कथा सुनते रहे, आपको धन्यवाद ही करना चाहिए, क्योंकि यहां का जो 24/7 का समय है ना, 7 दिन का, उसको गुणगुणित करो आप, कितने घंटे, कितने क्षण, कितने लव भगवान ने आपको इस धाम में दिए, इस हवा में, इस पानी में, हाँ निवास दिया आपको। वो कहीं तो गया नहीं ना, भले आप कहीं जगह पर नहीं गए, लेकिन वृंदावन धाम में तो रहे ना, इस दिव्य धाम में जहां पर सब कर्म धुल जाते हैं, भगवान की भक्ति, चरण की सेवा, चरण के शरण प्राप्त होती है, उसमें तो आपने निवास किया कि नहीं, तो धन्यवाद तो आपको देना ही देना है। ऊपर से कोई स्थान देख लिया आपने, कथा सुन लिया, उसका श्रवण कर लिया, तो सोने पे सुहागा। तो हमें तो ऐसा आना चाहिए यहां पर कि भाई हमारे ऊपर तो दिव्य धन लुटाया जा रहा है जिसके हम योग्य नहीं है, तो थैंक यू एंड थैंक यू दिन रात आपको ये बोलना चाहिए। और ये थैंक यू की भावना अगर आपको लाना है तो महाराज ने हमारे एक और फॉर्मूला बताया है। 1986 में जब राधानाथ महाराज जी ने हमारे पहली यात्रा निकाली थी वृंदावन धाम की, तो क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हमको रिसीव करने के लिए मथुरा स्टेशन पर आए थे वो, हम लोग के पहले आए थे और हमको लेने के लिए मथुरा स्टेशन पर आए थे और हम लोग स्टेशन से उतरे, कितने लोग थे? 22 लोग थे केवल। तो वहां पर एक रिसीविंग लाउंज था मथुरा स्टेशन पे, वहीं पर बैठ के महाराज ने एक थोड़ा सा कथा किया, वेलकम कथा, और उसमें एक बात बताई थी उन्होंने कि जिस क्षण आप श्री वृंदावन धाम में उतरोगे, इस भूमि को स्पर्श करने के लिए ट्रेन से जब उतरोगे, उस क्षण से दोबारा वापसी वाहन में बैठने तक, जैसे कि ट्रेन में बैठे कोई फ्लाइट में बैठेगा, जब तक यहां से आप बाहर नहीं जाओगे तब तक हर क्षण आपको हृदय में श्रीमती राधा रानी की याचना करते रहनी चाहिए उनकी कृपा के लिए, क्योंकि शरीर से हम तो आ गए, आत्मा से प्रवेश वो देने वाली है आपको, वो वही अधिष्ठात्री यहां की, वो ऐसी देवी है जो श्री कृष्ण को भी नियंत्रित करती है और श्री कृष्ण को जिसको सिफारिश करती है श्री कृष्ण उस पर कृपा करते हैं। तो श्री वृंदावन धाम का जो सही प्रवेश है आपका आत्म स्तर पर वो श्रीमती राधा रानी देती है। तो महाराज जी कहते हैं श्री वृंदावन धाम का निवास का एक ही सार है, वो है राधा रानी के कृपा की याचना करते रहना हृदय के अंदर के कोने में हमेशा के लिए जब तक आप यहां पर रहते हो। इसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी अपने आप होगा ये, बाहर देखेगे तो आपको उधर टिक्की दिखाई पड़ेगी, यहां देखेगे तो लस्सी दिखाई पड़ेगी, तो ये सारे झंझाल में आपको राधा रानी की कृपा की याचना करते रहनी चाहिए कि हम वो सब देखने के लिए यहां पर नहीं आए हैं, हम एकमात्र उद्देश्य आए हैं, वी वॉन्ट द मर्सी ऑफ राधा रानी, क्योंकि वही रहस्य यहां का है, वही सीक्रेट है, क्योंकि उनकी मर्सी से ही उनकी कृपा से ही कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, उसी से हमारे जन्म मृत्यु के बंधन की श्रृंखला टूट जाती है, उसी से भगवान की प्रेमा भक्ति और सेवा प्राप्त होती है और वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर यह हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है तो यहां पर आने का कोई मतलब ही नहीं, दिल्ली जाओ आगरा जाओ ताजमहल देखो इधर क्या रखा है, इधर वो सब चीज नहीं है जो आप शहर में अनुभव करते हो, इधर वो चीज है जो दुर्लभ है, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है, वो यहां पर प्राप्त होती है, इसलिए यहां का निवास बहुत कीमती है। आप सब दर दर दुनिया में भटक सकते हो लेकिन यहां पर पहुंच पाना भी एक बड़ी पूंजी के साथ यहां पहुंच सकते हो, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद भी हो सकता है कि हम अपनी चेतना में गड़बड़ की वजह से जो मिल रहा है उसको खो सकते हैं, दैट इज व्हाट योर कंसर्न इज। यहां पर आप आ गए हो और यहां पर जो प्राप्त होने के लिए मुमकिन है वो अगर हमारी चेतना की सही स्थिति न होने की वजह से अगर हम खो बैठते हैं तो इट इज अ बैड लक, वो दुर्भाग्य हम पर कभी भी नहीं आना चाहिए। इसलिए सब कुछ छोड़ दो, सब भूल जाओ कि हम लोग कौन है और यहां पर एक दिन याचक बन के रहो एज अ हम्बल बेगर ऑफ मर्सी। आप बोलेंगे अच्छा सिखा रहे हैं आप, बॉम्बे में तो सिखाते हैं पढ़ाई करो MBBS बनना है, पढ़ाई करो MD करना है, पढ़ाई करो बड़ा आदमी बनना है, पढ़ाई करो गाड़ी खरनी है, आप बोल रहे हैं आप लोग यहां पर प्रार्थना करो कि आपको भिखारी बनना है क्योंकि ये विपरीत कहा ना मैंने, सब कुछ विपरीत है। यहां पर जो सबसे गरीब है हृदय से दीन वही सबसे धनी, बड़ा धनी यहां का। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलम अति श्रेणीम सदा तुच्छवत, जो हमारे गोस्वामी थे वो इतने धनी थे, उनके पास बोट भर भर के सोने की मोहरे थे, अनंत धन था उनके पास। रघुनाथ दास को बताओ, रूप गोस्वामी को कहो, सनातन गोस्वामी को कहो, हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर बहुत धनी था लेकिन वो सारा धन छोड़कर यहां वो भिक्षुक बनकर कोपिन पहनकर रहने के लिए, वो भी पेड़ के नीचे, वो भी एक पेड़ के नीचे तीन दिन के ऊपर नहीं, ऐसा जीवन बिताने के लिए आए वो, भिक्षा मांगकर खाने के लिए, रोटी मांगकर खाने के लिए आए। क्यों आए? जितना धन उनके पास था उससे बड़ी वस्तु अगर उनको यहां प्राप्त होने वाली थी तो ही वो उसको छोड़ सकते ना। कोई भी व्यक्ति आपके पास कोई वस्तु को त्याग कर सकता है तो उसको पता है ये त्याग करूंगा तो बड़ी वस्तु मिलेगी उससे, तो वो भी उनके पास इतना धन था किसके बलबूते पर उन्हें सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इससे भी बड़ा धन जो है प्रेम भक्ति का वो यहां पर प्राप्त है। इसलिए उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया जो उनके पास था। इतने बड़े व्यक्ति, अर्थमंत्री, राज्य मंत्री, वो प्रधानमंत्री थे, वो बहुत धनी थे, वो सब कुछ अधिकार धन दौलत सब छोड़ के यहां पर आए वृंदावन में और पेड़ के नीचे रहकर भिक्षा मांगकर खाते थे। लेकिन ऐसे धन दौलत को उसने उन्होंने प्राप्त किया, ऐसे ऐश्वर्य को प्राप्त किया, भक्ति के ऐश्वर्य को, जिसके लिए हम भी लालायित हैं, और वो सब हमके लिए भी, हमारे लिए भी उन्होंने बना के रखा है। हाँ, मंदिरों के रूप में, किताबों के रूप में, धाम लीलाओं के सली के रूप में उन्होंने हमारे लिए बना के रखा है कि हमको भी वो धन प्राप्त हो जो उनको प्राप्त हुआ था। ये भूमि है वृंदावन धाम, यहां पर दुनिया के सारे संत आए हैं, हर संप्रदाय के, एवरीबडी हैज कम हियर। कोई भी संत जो है वो नामांकित है, जो मानते हैं उनको, ऐसा नहीं हुआ कि वो यहां नहीं आए, सब आए यहां पर, क्योंकि यहीं वो राज छुपा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान जो है भक्त बनकर आए, जन्म मायापुर में लिया, लेकिन हर दिन तड़पते थे कि मुझे वृंदावन जाना है। जगन्नाथपुरी संन्यास लेकर गए तो मुझे वृंदावन जाना है, 2 महीना रहे यहां पर वो, और वही रहस्य जो वृंदावन का है वो उन्होंने प्रकट किया। तब वृंदावन लुप्त हो गया था नजरों से, हमारे लौकिक नजरों से, लेकिन उसकी दिव्यता भगवान ने प्रकट की दोबारा, फिर संतों ने प्रकट की, उसके बाद में गोस्वामियों ने और विकसित किया उसको, फिर लुप्त हो गया, फिर ठाकुर भक्ति विनोद के समय पर उसको वापस विकसित किया गया। अरे बार बार धाम लुप्त और प्रकट और अप्रकट होते रहता है, अब भी वो कुछ लुप्त अवस्था में है, कुछ प्रकट अवस्था में है, पता नहीं और 10 साल के बाद में आओगे तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। इसलिए अभी जब देख रहे हो तो कृतज्ञ भावना से देखो कि आज जमुना जी बहते हुए नजर आ रही है, कल उसका सूखा पात्र देखने को मिलेगा, हु नोज। अभी इसका उदाहरण देता हूं, जब मैं 30 साल पहले यहां पर आया था तो मदन मोहन जी के नीचे एक प्रस्कंदन सरोवर था, भगवान ने कालिया को दमन किया, बहुत देर जमुना के जल में रहे, ठंड में तो बहुत ठंडे हो गए थे वो, तो टील पर चढ़ गए, और टील पर चढ़ गए तो उनको क्या कहते हैं उसको, उष्णता देने के लिए 12 सूर्य जो होते हैं ना वो प्रकट हो गए वहां पर, जो 12 सूर्य प्रलय के साल में प्रकट होते हैं उष्णता देकर सृष्टि को नाश करने के लिए। तो 12 सूर्य प्रकट हो गए, उन्होंने भगवान को हीट दिया ठंड से गर्म करने के लिए, तब भगवान के शरीर से दिव्य स्वेद निकला, जिसको हम पसीना कहते हैं, लेकिन पसीना भगवान के लिए नहीं कहते, स्वेद कहते हैं। वो दिव्य सुगंधित जल भगवान के शरीर से प्रकट हुआ और वो बहकर उधर एक सरोवर बना, उसका नाम है प्रस्कंदन सरोवर, प्रस्कंदन घाट कहते हैं जमुना जी का वो, उसका दर्शन मैंने किया है, लेकिन आज वहां पर वो नहीं है। आज खाली मैं आपको जगह दिखाऊंगा, यहां पर था वो, आज वहां पर गार्डन है। ऐसे कई चीजें, लुकलुक कुंड था वो भी नहीं दिखाई पड़ता है, काम्य वन में 1000 कुंड थे वो सब लुप्त हो गए। क्या कहने का मतलब है ये कि आज के जिस कलयुग के समय पर हम लोग यहां बैठे हुए हैं, उस समय पर कुछ हद तक ब्रज प्रकट है, उसके बाद में वो भी धीरे धीरे आपके नजरों से ओझल हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि नष्ट हो जाएगा, नजरों से ओझल हो जाएगा, आपके दृष्टि से वो अप्रकट हो जाएगा, वो है वही है लेकिन प्रकट नहीं रहेगा वो। इसलिए आज आपको जो दिखाई पड़ रहा है पूरे इंद्रियों से उसको ग्रहण करो, आंखों से, कानों से, हाँ, मुंह से, प्रसाद का स्वाद सब ऐसे ग्रहण करो कृतज्ञ भावना से, क्योंकि ये दिव्य रस जो है वो आपको आज मिल रहा है, पता नहीं कल मिले या ना मिले। तो कलयुग बहुत जोरों से आगे बढ़ रहा है और इस स्थिति में हम लोग यहां पर यात्रा करने आए हैं, तो हमारी सारी चेतना को जो बिखरी हुई है, हमारी कॉन्शियसनेस जो डिवाइडेड हो गई यहां वहां, तो सारो उसको इकट्ठा करो, कलेक्ट इट, गैदर इट टुगेदर, ब्रिंग इट वन प्लेस, और सारे भगवान को ग्रहण करने के लिए उसको इस्तेमाल करो। सारी चेतनाओं के जितने एंटीना सब जगह लगे हुए हैं उसको एक जगह फोकस करो, तो वो सारी चेतना जो है वो आपकी आत्मा में प्रवेश करेगी और थोड़े समय पे आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये वृंदावन धाम का निवास जो है वो पिकनिक नहीं है। पिकनिक इंद्रियों के भोग के लिए होती है, पिकनिक में सारे प्लानिंग मजा करने के लिए किए जाते हैं, खुद के आनंद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के भोग के लिए किए जाते हैं, लेकिन यात्रा जो है वो खुद के सारे आनंद को त्याग करके भगवान के आनंद के लिए की जाती है। पिकनिक में हम केंद्र स्थान में होते हैं, यात्रा में भगवान केंद्र स्थान में होते हैं। तो इस आपके 7 दिन की सफर को पिकनिक मत बनाने देना, और इसको पिकनिक क्या बनाएगा, आपकी चेतना। भारी स्थिति सेम रहेगी, होटल सेम रहेगा, भोजन भी सेम रहेगा, आपकी भावना उसको पिकनिक बनाएगी या तो आपकी भावना उसको यात्रा बनाएगी। तो उसको हर क्षण यात्रा बनाए रखना, तो कैसे कर सकते हैं वो, यात्रा तब होती है जब दूसरों की हम सेवा करते हैं, खुद को सबसे लास्ट में रखते हैं और सबको आगे करते हैं, सब खुद को सबसे पीछे रखकर सबकी सेवा करने का मौका ढूंढते हैं, सबकी सुविधा के सोचते हैं, अपनी अवस्था के होते हुए भी सबको सुविधा देने का प्रयास करते हैं। जो प्रसाद जो देने वाला होता है ना, वो क्या होता है कभी कभी उसको स्वीट बचता ही नहीं है, वो सब्जी बचती नहीं है, उसको दाल चावल ही बचता है, लेकिन वो बड़े धन्यवाद की भावना से दाल भात चावल खाता है, कहता है कि बहुत सबको मैंने खिला दिया, अभी आई डोंट माइंड, जो बचा हुआ है वो अमृत है मेरे लिए। उसको सारे पकवान से अधिक स्वाद उसमें आता है, भगवान देते हैं उसको, क्योंकि उसने अपने आप को छोड़कर दूसरों के आनंद का विचार किया है। यही धाम की चेतना है। वृंदावन धाम जो है, यहां पर जितने भी जीव रहते हैं, दिव्य स्तर पर रहते हैं, आत्मा स्तर पर, वो सारे लोग केवल दूसरों के आनंद का सोचते हैं, इसलिए वो दिव्य है ना। दिव्य कैसे बनेंगे, वो स्वार्थ तो सब लोग सोचते हैं, लेकिन खुद का सुविधा और खुद का आनंद त्याग करके जब दूसरों के लिए कोई मदद करता है, वो भगवान भावना में करता है, वो हमेशा यात्रा में है, चाहे वो इधर है या मुंबई में है। ये चेतना को हमको ग्रहण करना है। ये ब्रज का जो भाव है, ये परमार्थ का भाव है, और यहां से हमको वो भाव ग्रास्प करना है। जितने दिन, छोटे दिन मिले हैं, थोड़ा समय मिला है, उसमें उस भाव को कैप्चर करने का प्रयास करना है आपको, तब आपकी यात्रा सफल है। और जो जो भाव आप ले जाएंगे हृदय में बिठाकर, और बंबई में उस भाव के आधार पर आप जिएंगे, तो आप बंबई में भी यात्रा में ही हो। तो वो बंबई वाली यात्रा तब यात्रा होगी जब यहां की यात्रा होगी। जब यहां की यात्रा सही यात्रा होगी तो आगे का जीवन भी यात्रा होगा। इसलिए महाराज क्या बोलते हैं, नाउ अवर यात्रा बिगिंस। कभी बोलते हैं ये बाइबल लेक्चर में बोलते हैं, नाउ अवर यात्रा बिगिंस। मतलब क्या, इन 7 दिनों में 15 दिनों में जो भी आपने ग्रहण किया है, उसका प्रूफ आप बंबई जाने के बाद आपको मिलेगा कि आपने क्या ग्रहण किया। रिजल्ट के दिन मालूम पड़ेगा कितना परसेंट मिला है। तो साल भर में क्या किया है तो मालूम पड़ेगा, वो रिजल्ट के दिन मालूम पड़ेगा कितना परसेंट मिला है। तो जो फर्स्ट आया, आप बिना मतलब के बोलेंगे साल भर पढ़ाई किया इसने। नतीजा क्या है कि जब साल भर चल रहा था तब इसने बहुत पढ़ाई किया है, ये इस अंक के ऊपर हम बता सकते हैं। उसी तरह से हमारी चेतना जब बंबई जाकर हम जीते हैं, उस पर हम बता सकते हैं कि आपका धाम वास कैसा था, आपकी यात्रा कैसी थी। इसलिए बार बार हम विनती करना चाहते हैं कि ये धाम जो है ना, ये अग्नि की तरह है। यहां पर अगर कोई गलत चेतना में रहेगा ना, तो बिना फायदे के नुकसान करके जाएगा वो यहां से। ये एक तीव्र धाम है, यहां पर हर किए हुए कार्य का 1,00,000 गुना परिणाम होता है, ऐसे पद्म पुराण में लिखा है। मथुरा मंडल में आप अगर भगवान का एक नाम लेंगे तो आपको 1,00,000 बार वो नाम लेने का लाभ मिलेगा। आप एक माला करोगे 1728 मंत्र वाली, तो आपको 1,00,000 माला करने का लाभ मिलेगा। लेकिन एक अपराध करेंगे तो बंबई से ज्यादा 1,00,000 गुना उसका नुकसान भी आप ग्रहण करके जाओगे, दोनों तरफ से 1,00,000 टाइम्स। हाँ, खाली बेनिफिट के लिए 1,00,000 टाइम्स नहीं है, दोनों तरफ से डेंजरस धाम है ये। अगर आप सही चेतना में रहे तो हर चीज का आपको 1,00,000 गुना लाभ मिलेगा। हर साधना का, हर सेवा का, हर अध्ययन का, हर श्रवण का, हर दर्शन का आपको 1,00,000 गुना लाभ मिलते जाएगा। आप बड़ी पूंजी बटोर को यहां पर जाओगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि यहां का अपराध भी उतना ही परिणाम देता है, तो फिर आप लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। इसलिए चेतना की तैयारी करना जरूरी है। यहां का निवास आसान नहीं है। जितनी कृष्ण भावना यहां पर है, उतनी माया भी यहां पर प्रभावित है। बंबई से कई गुना अधिक माया यहां पर रहती है। अगर किसी को पतन हो जाना है तो यह बेस्ट जगह है। गलत धारणा से यहां पर ऐसा आदमी गिरेगा, उठ ही नहीं पाएगा वापस। यहां पर आकर अपराध करेगा तो वापस कभी उठेगा नहीं वो। जो हम देखते हैं ना, सुअर, बंदर सब देखते हैं, ये आचार्य बताते हैं कि ये सब वो जीव हैं जो जिन्होंने वृंदावन में आके अपराध किया, तो यहां पर तड़पते हैं, बहुत दुख और कष्ट पाते हैं। लेकिन धाम का महात्म्य क्या है, साथ में महात्म्य भी है। ये धाम का महात्म्य बताता है कि यहां पर आप आएंगे, अपराध करेंगे तो आपको बाहर का जन्म नहीं मिलेगा, यही जन्म मिलेगा। सुअर का और बंदर का उसका मिल सकता है अगर अपराध किया हो तो, नहीं तो यहां पर जो आपने पुण्य किया है, सेवा किया भगवान का, उससे हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते। इसलिए हमें यहां पर बड़ी सतर्कता और सावधानी से अपने समय को बिताना है। किसी भी तरह से अपनी चेतना को यहां से वहां डाइवर्ट नहीं होने देना है। यहीं क्यों? जगन्नाथपुरी में, मायापुर में हमको इसी चेतना में रहना है, क्योंकि हम एक भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए यहां पर आए हैं। इसलिए कुछ चीज समझ में आएगी हमें, कुछ नहीं आएगी, कुछ पल्ले पड़ेगी नहीं पल्ले पड़ेगी, कोई बात नहीं, बस भक्तों के संग में रहना और भक्तों की जो आज्ञा है वैसे करते रहना, अपने मन से कोई स्वतंत्र बात मत करना, अरे नहीं तो मुझे वो बनखंडी महादेव की शिव जी की पूजा करनी है, आप लोग जाओ मैं जरा पूजा करके आता हूं। यहां पर वो प्लानिंग होना चाहिए जो हमारा जो ग्रुप का नेता है उसने बनाया हुआ है, तो आपको सारी कृपा मिलेगी उसके अंदर। स्वतंत्र प्लान बनाने का यहां पर किसी भी गोपाल ने, किसी भी गोपी ने कभी का आइडिया नहीं किया था, कोई कार्य यहां पर भगवान के काल में किसी भी जीव ने उनके नेता के खिलाफ नहीं किया था। भगवान के भी अंदर कोई वृंदा देवी है, ललिता है, विशाखा है, कोई बहुत सारे लीडर्स हैं, सब लोग उनकी सेवा में कार्य करते हैं, एकदम जो बताया वही करते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, जो भी प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहते हैं। ऐसा नहीं वो गोपी बोलती है कि मैंने फूल बिने थे, मैंने माला बनाई थी और कोई और पहना रही है उनको, तालियां उसके लिए बज रही है, नहीं मुझे फूल बिनने की सेवा दी गई थी, वो मुझे मिली इसलिए धन्यवाद है। माला बनाने का सेवा दिया था, वो मिला थी सेवा, तो वही धन्यवाद है उसका। वो कभी किसी मान्यता की के लिए अपेक्षा नहीं करते हैं। उसी तरह से हमको यहां पर जो भी प्राप्त होता है उसको धन्यवाद की भावना से स्वीकार करना चाहिए, और यह सब तब मुमकिन है जब हम नम्र होंगे। अगर मैं कुछ समझता हूं अपने आप को तो मैं कंप्लेंट करते रहूंगा, ये क्यों नहीं मिल रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, उसको क्यों आप ताली बजा रहे हो, मुझे थैंक यू कब बोलोगे, मैंने इतना सब किया है। वो जो मिल रहा है उसके लिए हम धन्यवाद तब कर सकते हैं जब हम नम्रता से आते हैं यहां पर। तो ये धाम का निवास है। और मैंने सुना कि आप बरसाने गए थे कल, आज वृंदावन गए हैं, थोड़ा समय बाकी है तो थोड़ा स्टोरी बता देते हैं आपको। यहां पर हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, सब आचार्यों का यहाँ पर विग्रह है, उनकी लीला स्थली है, भगवान अनंत रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं, भगवान ने यहाँ पर बहुत लीलाएं की हैं, प्रेम लीलाएं। और जितने वन हैं वो कुछ प्रधान 137 वन बताए गए हैं, 137 उसमें से 12 वन जो है वो भगवान को अति प्रिय है। उसमें से 5 वन जमुना जी के पश्चिम दिशा में है और 7 वन पूर्व दिशा में। उन 12 वनों में भगवान को श्री वृंदावन वन जो है वो सबसे अधिक प्रिय है। और ये वृंदावन जो आज का आप देख रहे हो ना, वो ज्योग्राफिकली बहुत छोटा है, लेकिन जो दिव्य वृंदावन है जिसका वर्णन शास्त्र में आता है, उसमें नंदगांव, बरसाना, जावट, गोवर्धन, जमुना सब सम्मिलित है। वो 20 कोस का है, 84 कोस में 20 कोस तो वृंदावन ही है। और नंदगांव जैसे समझो, गोकुल जो है वो महावन है, वो अलग है। तो नंद बाबा जब गोकुल से वृंदावन आए, मतलब वो वृंदावन में ही नंदगांव है, वो अपने वृंदावन में रह रहे वो, तो वो वृंदावन जो है वो भगवान का सारे 12 वनों में से सबसे प्रिय वन है। उनका नंबर 2 प्रिय वन है काम्य वन, उसको प्रति वृंदावन कहते हैं, वो भी बहुत सुंदर है। और आज के तारीख में ये जो वृंदावन है वो सब आश्रमों से, रोड से, ट्रैफिक से, हॉर्न से भरा हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो बाहरी दृष्टि से। लेकिन काम्य वन अभी भी ऐसे ही वन के रूप में है, बहुत सारे कुंड है वहां पर, बहुत सारे पर्वत है, बहुत लीला स्थली है, भगवान के गौचारण लीला, माधुरी लीला, रास लीला सब वहां पर भगवान ने की है। परशुराम के द्वारा बनाए 9 कुंड है, धर्मराज का कुंड है, सेतु बंद है, आदि बद्री है, केदार है, गया कुंड है, श्रीलंका है, रामेश्वर है, सब भगवान ने प्रकट किया वहां पर। चरण पहाड़ी है, कई प्रकार के भगवान के चरण चिन्ह वहां पर विराजमान है, बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। एनीवेज, तो ये वृंदावन धाम जो है ये भगवान का प्रिय होने की वजह से सारे संतों का भी प्रिय है, जो भगवान का प्रिय है वो उनका प्रिय है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी यहां पर जब आए, मैंने कहा ना सब कुछ छोड़कर एक कोपिन धारण करते हुए भिक्षुक बनकर आए, तो वो मथुरा में जाया करते थे। उसके पहले यहां पर अद्वैत आचार्य आए थे। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु के अवतार है, सदाशिव के अवतार है। वो महाप्रभु के आने के पहले यहां पर भजन करने के लिए आए थे, और जहां पर आज मदन मोहन जी का मंदिर है उसके नीचे उनकी भजन कुटी है, जरूर देखना आप उसको, उधर एक वट का वृक्ष है, वहां पर उन्होंने भजन किया था बैठकर, एकांत में, तो उनके सामने मदन गोपाल जी ऐसे स्वयं प्रकट हो गए और मदन गोपाल जी का भी उन्होंने सेवा किया। फिर जब महाप्रभु का अवतार हुआ तो उन्होंने इस मदन गोपाल जी को मथुरा में एक पुरुषोत्तम चौबे को दे दिया कि भाई तुम उसकी सेवा करना, और वो चले गए मायापुर धाम शांतिपुर, वहां पर भगवान का स्वागत करने के लिए। तो मदन गोपाल जी वो पुरुषोत्तम चौबे और उनकी पत्नी के पास रहते थे, तो मदन गोपाल जी के प्रति चौबे जी और उनकी पत्नी का बड़ा वात्सल्य भाव था पुत्र के रूप में। भगवान भी ऐसे अद्भुत हैं, कभी मूर्ति के रूप में कभी प्रत्यक्ष रूप में लीला करते थे वहां पर, कभी मूर्ति के रूप में सेवा ले रहे हैं, कभी उनके बालकों के साथ में बालक बनकर यमुना किनारे खेल रहे हैं। ये भी एक अद्भुत लीला है, समझने के लिए बहुत मुश्किल है कैसे हो सकता है ये, लेकिन भगवान क्या नहीं कर सकते, जब चाहे मूर्ति जब चाहे प्रत्यक्ष। तो ये सनातन जी महाराज जो है वो जब यहाँ पर आए तो मथुरा में भिक्षा करने जाते थे, तो भिक्षा करते करते पुरुषोत्तम जी के घर पे पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, डांट रही है, मस्ती करता है, समय पे आता नहीं है भोजन करने के लिए, तुझे मैं डंडे से मारूंगी, तुम बहुत नटखट हो गया है। तो महाराज जी देख रहे हैं, अरे ये क्या बात है, भगवान को डंडा लेके डांट रही है, तो मैया ऐसे नहीं करना होता है, ये साक्षात भगवान है, इनकी बड़ी प्रेम से और आदर से और ऐश्वर्य के साथ सेवा करनी चाहिए, आप तो डंडा दिखा रहे हैं उनको, ये कैसा सेवा है आपका, कैसे विग्रह सेवा है आपकी। तो माता बिचारी भोली भाली थी, वो बड़ी अच्छी भक्त थी भगवान की, तो महाराज जी को सन्यासी का वचन सुन के बहुत भयभीत हो गई वो, अरे बाप रे मैंने इतना बड़ा अपराध कर लिया, एकदम उसका भाव बदली हो गया पूरा, एकदम ऐश्वर्य वाला आदर वाला भाव हो गया, बड़ी वो आरती से पूजा एकदम प्रेम से करने लगी, मतलब जो भाव था ना वात्सल्य का 1-to-1 वो समाप्त हो गया और वो ऐश्वर्य के साथ उनकी पूजा करने लगी। तो हमारे मदन गोपाल जी को अच्छा नहीं लगा, बोला कितना अच्छा भाव था, कितनी प्रेम से मैया मुझे डांट रही थी, कितना प्रेम से खिलाती थी, ये महाराज जी आए बीच में सब कुछ गड़बड़ कर दिया उन्होंने, अभी क्या है वो चेंज नहीं हो सकता है, अभी तो मैया का भाव वापस चेंज हो गया है, वो भी तो वापस मेरे को डांट नहीं सकती वो। तो स्वप्न में आए सनातन जी के, बोले तुमने बड़ा गड़बड़ कर दिया है, मैं अच्छे आनंद से रहता था वहां पर, तुमने आके पूरा भाव ही चेंज कर दिया है, अभी मुझे वहां पर वो आनंद नहीं आ रहा है, अभी ये काम करो तुम आ जाओ और मुझको ले चलो, कल वो मैया तुम्हें मुझे दे देगी, तुम लेके आ जाओ वृंदावन में। और उधर मैया को स्वप्न दिया, मैया ने कहा वो जो कल बाबा आए थे ना वो कल भी आएंगे, मुझे उनको दे देना भिक्षा में। तो मैया को और दुख हो गया कि भगवान मतलब ठाकुर जी नाराज हो गए मुझ पे, लेकिन क्या कर रहे अभी वो बोल रहे हैं। तो बराबर उसी दिन सनातन जी वहां पहुंच गए, तो उन्होंने उनको दे दिया, उनको लेकर वृंदावन आ गए, वो कहां रहते हैं पेड़ के नीचे रहते हैं। तो उन्होंने बोला देखो आप तो आ गए मेरे साथ, लेकिन मैं तो भिक्षुक हूं, मांग के खाता हूं, कोई बात नहीं जो मांग के मिलेगा मुझे खिला देना मैं खाऊंगा, देखो मेरे पास कुछ है नहीं, सूखी रोटी ऐसा कुछ मिलता है मुझे, अधिकतर तो मुझे आटा मिलता है आटा, वो आटा मैं जमुना जी के जल में भिगोता हूं, उसकी गोली बना देता हूं, थोड़ी आग जलाता हूं, उस गोली को भूनता हूं, उसको कहते हैं बाटी, वही मैं खाता हूं, वही मेरा भोजन है। बोले कोई बात नहीं बाटी हमको खिला देना, मैं रहूंगा आपके साथ, और सुनना मैं एक पेड़ के साथ भी 3 दिन रहता नहीं हूं, चेंज करना पड़ता है। बोले क्या चलेगा। तो आ गए मदन गोपाल जी, और वो जो मैंने कहा ना आपको कृष्ण भगवान को 12 सूर्यों ने गर्मी दिया, वहां पर रहने लगे वो। तो मदन गोपाल जी और मदन मोहन जी एक ही व्यक्ति एक ही है, अलग दो नाम है उनके। तो वो कभी नीचे बालकों के साथ यमुना किनारे खेलते थे, यहां पर भी यमुना किनारा है, मथुरा में भी था, तो कभी उनकी मूर्ति के रूप में जो बाटी अर्पण करते थे उसको स्वीकार करके उनकी आरती पूजा भी स्वीकार करते थे। तो एक दिन बोले अरे मदन सनातन जी कुछ नमक नहीं कुछ नहीं कुछ स्वाद नहीं, कितने दिन ऐसे खिलाओगे मुझे, क्योंकि तो बाटी को क्या है अभी आपको समझो, अभी चावल का अपना गेहूं का आटा खिला दिया उसको गोली बना दिया, हम लोग क्या तेल भी डालते हैं उसके अंदर, नमक भी डालते हैं, अच्छा तरह से उसको बनाते हैं तभी उसका स्वाद आता है रोटी का, ये कोई नमक भी नहीं कुछ नहीं। उन्होंने कहा पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कोई नमक की व्यवस्था नहीं है, और आज तुम नमक मांग रहे हो कल मिठाई मांगोगे तो कहां से लाऊंगा मैं उसको। हाँ भिक्षा में जो खोड़ी बोलते हैं मैया आज गुलाब जाम देना, मैया आज दीपावली का उत्सव है लड्डू देना मुझे आज, ऐसा नहीं होता है, अभी आज के भिखारी मांग सकते लेकिन ऐसे, लेकिन वो जो सच्चे संत थे वो ऐसा नहीं मांगते थे, वो जो दे उनका ये भी नियम था कि वो रोज एक घर में जाते नहीं थे कि भाई ये मैया अच्छी है वो अच्छा अच्छा देती है तो लोग उधर जाएंगे रोज, ये उनका नियम था, एक तो एक घर में बार बार जाना है और एक घर में जाकर तीन बार पुकारा और नहीं मिला तो चले जाना है। ऐसा नहीं कि भाई कल यहाँ पर अच्छा मिला था, अभी आज बार चार बार पुकारता हूँ, अच्छा मिलेगा तो जरा मजा आ जाएगा खाने को। इतने नियम होते भिक्षा के भी, ऐसी भिक्षा करने वाले थे वो, थोड़ा नहीं मिलेगा मेरे पास है नहीं। फिर दूसरे दिन भगवान ने लीला किया, एक वहां से नेता सॉरी क्या बोलते व्यापारी पंजाब का मुल्तान का रामचंद्र कपूर वहां से आया, बोट भर के जमुना जी में से आया आ रहा था वो, और वो नमक का बिजनेसमैन था, वो पूरा नमक भर के आया वो। और जब ये वृंदावन में पहुंचा तो पता नहीं जमुना जी में ऐसा भंवरा आ गया कि वो गोल गोल घूमने लगा, तूफान आ गया एक तरह से, हाँ बोट उसके ऐसे दिशाहीन हो गई, वो कैसे भी करके उसने छलांग मारी और तैरते हुए किनारे में आया और पूछने लगा कोई बचाओ बचाओ कोई है क्या कोई है क्या। तो मदन गोपाल जी यहाँ पर बालक के रूप में खेल रहे हैं, उन्हीं को पूछ रहे बचाओ बचाओ, तो मदन गोपाल जी बोलते हैं टील पर एक महात्मा बैठे हैं वो बचाएंगे आपको, बड़े महात्मा है बड़े सिद्ध पुरुष है। तो गया भाग भाग के, महाराज जी वो बच्चों ने कहा कि आप बहुत सिद्ध पुरुष हो मेरी बोट को बचाओ, बोलते नहीं आप मदन गोपाल को शरण जाओ मदन गोपाल जी आपको बचाएंगे। तो ये बड़ा चक्र है मदन गोपाल जी कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है कुछ। उतने में जब ये ऊपर पूछने गए तो मदन मोहन जी ने अपना दुपट्टा उठाया और ऐसे घुमाया उसको हवा में, वो पूरी हवा को ऐसा खींच लिया उसकी तरफ से और पूरा बोट जो है ना वो किनारे में लाया भगवान ने। भगवान क्या नहीं कर सकते, बालक हो या बोटे हो बड़े हो सब चीज उनके नियंत्रण में है। मध्वाचार्य ने भी ऐसे किया था, वो मलपे बीच में ऐसा फेटा घुमाया तो पूरा बोट लेके आए वो मलपे बीच में। तो लौट के बोट जब आई तो बहुत खुश हो गया वो, महाराज जी को बोला महाराज जी आपकी कृपा से हुआ है आप जो चाहे ले लो उसमें से। तो महाराज जी ने कहा कि मैं तो फकीर आदमी हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मदन मोहन जी के लिए एक मंदिर बना दो आप, तब जाकर मंदिर बनाओ आज जो आपको दिखाई पड़ रहा है। वो एक बार जो लुप्त हो गया था उसके बाद में बना हुआ पहला मंदिर है वो, हाँ करीब करीब 1680 इस साल में वो तैयार हो गया, सबसे बड़ा मंदिर वो टील पर बनाया गया उसको। मतलब सनातन गोस्वामी थे एक कृष्णदास ब्रह्मचारी को वो मदन मोहन जी का विग्रह सेवा करने को दिया उन्होंने और वो स्वयं गोवर्धन चले गए, कुछ दिन गोवर्धन रहे कुछ दिन नंदगांव रहे उधर पावन सरोवर किनारे, और फिर गोवर्धन में उनका जगह है भजन कुटी चक्रेश्वर महादेव के पास, वहां पर भजन किया उन्होंने और उनके जाने के पश्चात ये मंदिर पूरा हुआ है। ये मदन मोहन जी का मंदिर है, ये मदन मोहन जी जो है भगवान के चरण कमल संबंध विग्रह है भगवान के, ये भगवान के चरणों से हमारा अपना संबंध जो है दोबारा जोड़ते हैं ये, इसलिए उनको संबंध विग्रह कहते हैं। हमारा संबंध जो दुनिया से बना हुआ है, अभी हम दुनिया से बहुत अच्छी तरह से लिंक्ड हैं, हाँ सारी भोगी व्यवस्था अच्छी तरह बना के रखी हमने, हमारी इंद्रियां भी जुड़े हुए हैं सब दुनियादारी के बीच में, तो उससे हमको तुड़वा कर वो अपने चरणों से दोबारा संबंध प्रस्थापित करते हैं, इसलिए उनका नाम संबंध विग्रह है वो मदन मोहन जी। उनके आचार्य सनातन गोस्वामी जी है वो भी संबंध आचार्य हैं, उनकी कृपा से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमारा दिल जो आसक्ति लगी हुई है दुनियादारी के बीच में उसको आप काटो, हमें पसंद नहीं आएगा हमें कष्ट होगा फिर भी आप परवाह नहीं करना, वो संबंध से हमारा मन हटाकर आप अपने संबंध से हमें जोड़ देना, वो मदन मोहन जी है। उसके बाद में गोविंद जी है, संबंध जोड़ने के बाद क्या होता है सेवा प्राप्त होती है, तो गोविंद जी वो सेवा देते हैं इसलिए उनको अभिधेय कहा गया है, द मीन्स वो है अभिधेय, और वो रूप गोस्वामी के ठाकुर जी हैं। रूप गोस्वामी ऐसे यहां भजन कर रहे थे तो वो देखते थे कि एक गाय आती है रोज और एक छोटे टील पर चढ़ती है तो सारा दूध छोड़ देती है वहां पर, तो रोज जो गाय घर पहुंचती है तो ग्वाले को दूध ही नहीं मिलता है, वो दूध निकालना दूध खत्म। एक दिन वो पीछे पीछे आया देखते देखते कहां जाती है गाय और कहां दूध छोड़ के आती है, तो देखिए कि वो गाय चढ़ती है वो टील पर और उसमें सारा दूध छोड़ रही, तो मारने के लिए उठाया तो कुछ लोगों ने रोक लिया उसको। उसी रात को रूप गोस्वामी को सपना आया, गोविंद जी प्रकट हो गए उनको और बताया कि मैं उस टील के अंदर हूं इसलिए वो गाय सुरभि गाय है मुझे दूध छोड़ के जाती है रोज, मुझे वहां से निकालो और स्थापन करो। तो अगले दिन रूप गोस्वामी ने सारे ब्रजवासियों की सहायता से बड़ी कोमलता से ठाकुर जी के विग्रह को बाहर निकाला और वही पेड़ के नीचे उसका आरंभ किया। तो मान सिंह जो थे, मान सिंह ना उनका नाम था, वो अकबर के सेनापति थे, मान सिंह इज इट राइट, हाँ मान सिंह बड़े पावरफुल व्यक्ति थे, वो भक्त थे। वो रूप गोस्वामी के पास में आए, उन्होंने कहा आपको सेवा करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि गोविंद जी के लिए मंदिर बनाओ, मैं तो साधु हूं मुझे कुछ जरूरत नहीं है। तो वो भी उन्होंने अपने ब्रह्मचारी के साथ में उनका सेवा दिया गोविंद जी का, और वो चले गए तेर कदम में, वहां पर ग्रंथ लिखे उन्होंने, और तब जाकर 7 मंजिल का मंदिर बना गोविंद जी का और स्थापना किया गया। और वो गोविंद देव अभिधेय विग्रह है, जो संबंध प्राप्त कर चुके हैं मदन मोहन जी की कृपा से, वो गोविंद जी की कृपा से सेवा प्राप्त करते हैं। और फिर आते हैं गोपीनाथ जी, वो हमारे प्रयोजन विग्रह हैं। प्रयोजन का मतलब है अल्टीमेट पर्पस, परफेक्शन इन सर्विस। तो ये कैसे प्रकट हुए? ये हमारे मधुपंडित आचार्य थे, मधु गोस्वामी। वो इतने बड़े भक्त थे भगवान के, वो पंजाब, वो बंगाल से आए थे। सब लोगों ने उनको बताया, वो विरह में थे, कहां है कृष्णा, कोथा है कृष्णा, कोथा है कृष्णा। तो सब संतों ने उनको बताया मायापुर में, नवद्वीप में, कि वो वृंदावन में मिलते हैं, वो उनका निज स्थान है, वहीं पर मिलेंगे आपको। तो उनकी बात मानकर ये ब्रज में आए, और सारे वनों में पुकारते हुए भटकते थे, कोथा है कृष्णा, कहां पर हो आप, कहां पर हो। यही सभी संतों का भाव था यहां पर। उन्होंने कोई भोग के लिए सर्च नहीं किया, यहां पर कृष्ण को ही ढूंढा उन्होंने सब जगह पर। तो मधु गोस्वामी जी ढूंढते 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 सब जगह ढूंढ रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं, बालकों को पूछ रहे हैं, मैयाओं को पूछ रहे हैं, बाबा को पूछ रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं कहां कृष्ण है। तो इनका भाव देखकर उनको क्या बोले, वो भी यहां जाओ, तो बोलते थे ये मंदिर में जाओ, बोलते ये जमुना किनारे जाओ, वो बोलते इसी जगह पे जाओ, ये वन में जाओ, ऐसे उनको कुछ ना कुछ बोलना है ना, क्योंकि वो पूछ रहे हैं। जैसे कि आप पूछ रहे हैं मुरलीधर बाबू कहां है, तो आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना, अगर पता नहीं तो बोलेंगे कि ये जगह जाओ, शाम को वहां देखा था, ऐसे कुछ बोलकर उनको भेज देते थे वो। क्या करेंगे ब्रजवासी अभी, इतने भाव में कोई पूछ रहा है कृष्ण कहां है, क्या बताएंगे उनको। तो बताते ऐसे जमुना जी में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। तो एक दिन वो जमुना किनारे ऐसे आए, तो उन्होंने किसी ने कहा कि जमुना के पास वहां निश्चित मिलेंगे आपको कृष्ण। तो श्रद्धा के साथ में गए, और वो पत्थर पर बैठ के ऐसे भाव में पुकार रहे हैं, कोथा है कृष्णा, कहां हो आप। तो अचानक ऐसे लहर एक आ गई, तो जिस चट्टान पर बैठे थे वो फिसल गई, और वो पूरे जमुना जी के जल में चले गए, और डूब रहे थे जमुना जी के, वो भाव में विभोर है, उनको पता ही नहीं जल में है कि थल में। उस समय जल में ठाकुर जी प्रकट हो गए, और उनको उठाया उन्होंने और बाहर लेकर आए। तभी वो ऐसे भाव से होश में आए, तब हाँ अभी आप, मैं आपको प्राप्त कर चुका हूं, अभी मैं, ठाकुर जी कहते क्या चाहते हो, तो ऐसे ही मेरे सामने बने रहो। तो वो जो चलायमान भगवान थे प्रत्यक्ष, वो मूर्तिमान हो गए, वही गोपीनाथ जी है, वो जो बंसीवट है यहां पर जमुना किनारे, वहीं पर उन्होंने स्थापन किया उनको, और आगे जाकर राजा ने उसका मंदिर बनाया। और वो है गोपीनाथ जी, राधा गोपीनाथ जी, जो बंसीवट के किनारे बसे हुए हैं, वहीं पर मधु पंडित की समाधि भी बनी हुई है। अभी बंसीवट थोड़ा दूर है वहां से, लेकिन सब जमुना किनारे तो है सब कुछ ये। फिर राधा श्याम सुंदर जी, श्यामानंद पंडित की ठाकुर जी, ये श्यामानंद जी वो दुखी कृष्ण थे उनका नाम, और हृदय चैतन्य के द्वारा उनकी दीक्षा हुई थी, किधर, अंबिका कालना, हृदय चैतन्य मायापुर धाम में, वहां से वो आए वृंदावन में, और झाड़ू लगाते थे बड़े प्रेम से, हाँ ब्रज रज में नहाते थे रोज, ऐसे कृष्ण की याद करते थे भाव से। एक दिन राधा रानी का नुपुर उनको मिला वहां पर, तो एक लड़की आई, बोली हमारी स्वामिनी का यहां पर पायल मिली है क्या आपको। तो बोलते किसका है ये, और हमारे स्वामिनी का है। तो कहते हैं उसको लेके आओ, फिर हम देंगे उसको, मिला है हमको जरूर। तो ये लीला है भगवान की अपने भक्त पर कृपा करने के लिए। तो ललिता जी थी, वो लड़की ललिता थी, वो भेष बदल कर आई थी, वो सारे अष्ट सखियों को लेकर वहां पर आई, और दिव्य प्रकाश हुआ, और अचानक दुखी कृष्ण का स्वरूप भी बदल गया, वो गोपी बन गए। राधा रानी ने उनको अपनी गोद में लिया, चरणों में बिठाया, और जो जो पायल उन्होंने लौटाया उनको, पायल लेकर उनके सर पे उन्होंने दबाया, तो एक तिलक बन गया उनके सर पर। तो उन्होंने बताया कि ये मेरी विशेष कृपा है आपके ऊपर, लेकिन किसी को बताना नहीं कि ये मैंने आपके लिए किया है, और आज से आपका नाम श्यामानंद है, गुरु ने रखा था दुखी कृष्ण। राधा रानी ने कहा श्यामानंद है, ये भी किसी को बताना नहीं। और उसी समय राधा रानी ने अपने हृदय से ठाकुर जी को प्रकट किया, स्वयं अपने प्रेम भरे प्रेम संपृक्त हृदय से कृष्ण की मूर्ति प्रकट की और वो उनको सौंप दी। ये श्याम सुंदर जी हैं, इनकी आप पूजा करना। और सब अंतर्धान हो गए, इनका भी गोपी का स्वरूप नष्ट हो गया, वापस श्याम मतलब पुष्पुरुष रूप में प्रकट हो गए और भाव में ऐसे पड़े हुए हैं, उन पर रंग चढ़ा हुआ है, उन पर तिलक नया लगा हुआ है, ऐसे भाव में पड़े मिले सबको लोगों को। तो फिर वो ठाकुर जी को लेकर वहां पर सेवा करने लगे। तो अभी तिलक जो लगा हुआ, ऐसा नहीं कि हम लोग धोते हैं तो निकल जाता है, फिर दोबारा लगाना पड़ता है, इसका तिलक परमानेंट है। तो सबको आश्चर्य हुआ, ये क्या, अभी वो बोल नहीं सकता किसी को। तो फिर वो बात चली कि ये तो अपना रास्ता छोड़ दिया इसने, अभी गुरु की आज्ञा पालन करना भी छोड़ दिया, नाम भी बदल लिया, गुरु ने कुछ दिया अपना नाम बदल लिया, नया तिलक लगा रहा है वैष्णव तिलक छोड़ के। ये खबर जो है घूमते 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 अंबिका कालना पहुंच गई, तो गुरु को मालूम पड़ी, गुरु बहुत गुस्सा हुए, भाग के आ गए वृंदावन में, बहुत डांटा और उसको पीटने लगे वो। तब वैष्णव ने रोक लिया उनको कि मत पीटो, वो ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, रो रहे हैं खाली बस। रात में स्वयं राधा रानी स्वप्न में आई, हृदय चैतन्य के स्वप्न में महाराज जी के, और कहा कि क्यों डांटते हो, मैंने उसको तिलक लगाया है, मैंने उनको नया नाम दिया है। तो अगले दिन रात को उठकर भाग के आकर अपने शिष्य के चरणों में गिरते हैं कि तू मेरा शिष्य नहीं, तुम्हारा गुरु है, जिनकी प्राप्ति के लिए मैं भजन कर रहा हूं, उनकी प्राप्ति आपको ऑलरेडी हो चुकी है। तो फिर वो भी रोए, वो चरणों में गिरे इनके। तो वो राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए एकमात्र ठाकुर जी का विग्रह जो है वो श्याम सुंदर जी है। और उस मंदिर में एक गुफा भी है जिसमें वो श्यामानंद गोस्वामी भजन किया करते थे। और जो बड़ा विग्रह जो है वो एक ब्रजदानंद स्वामी जी थे, उनका बड़ा विग्रह है, लेकिन साइड में एक छोटा विग्रह है वो रखा है, वो मूल श्यामानंद महाराज के श्याम सुंदर जी हैं। उसके आगे दामोदर जी का विग्रह है, वो सेवा कुंज एरिया है। तो सेवा कुंज एरिया में रूप गोस्वामी रहा करते थे जब ही गोविंद जी के मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो कुछ समय वो उस मंदिर में रहे हैं। और वो मंदिर जीव गोस्वामी का मंदिर, तो जीव गोस्वामी के प्रेम की वजह से स्वप्न में राधा रानी ने रूप गोस्वामी को मूर्ति कैसे बनानी है सिखाया। वो तो मूर्तिकार तो नहीं थे, लेकिन रूप गोस्वामी को उन्होंने स्वप्न में मूर्ति बनाना सिखाया और उनके आदेश के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार उन्होंने मूर्ति बनाई। और वो मूर्ति बड़े प्रेम से जीव गोस्वामी को अर्पण की, और वो मूर्ति है राधा दामोदर जी, और वो भी वहां विराजमान है। और राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी, सबसे छोटे गोस्वामी, सबसे उम्र में छोटे साउथ इंडियन गोस्वामी श्रीरंगम के, उनको शालिग्राम जी प्राप्त हुए थे गंडकी नदी में भगवान की कृपा से, उसमें से एक दामोदर नाम के शालिग्राम शिला से वैशाख पूर्णिमा के दिन नरसिंह जयंती के दूसरे दिन शालिग्राम शिला से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। एक धनी व्यक्ति आया था, भाव से सब गोस्वामी को उन्होंने, उसने ठाकुर जी के अलंकार दिए विग्रह को पहनाने के लिए। वो इनके ठाकुर जी तो शालिग्राम थे, गोल गोल हाथ पैर कुछ अंग नहीं उनके लिए। तो नरसिंह चतुर्थी के दिन उन्होंने जब कथा पढ़ी नरसिंह भगवान की, तो उनके मन में ऐसा भाव आया, अरे प्रहलाद ने एक उंगली दिखाया तो खंभे से बाहर आ गई तत्क्षण, तो ये शालिग्राम के अंदर से क्यों नहीं आ सकते, ऐसा खाली मन में विचार आया उनके। उन्होंने कहा डिमांड नहीं किया, ऐसा एक विचार आया कि क्योंकि नरसिंह भगवान के आविर्भाव के दिन कथा तो पढ़ी उनकी, और कथा का सार क्या है उसमें, प्रहलाद जी ने एक उंगली दिखाया उसमें तत्क्षण प्रकट हो गए वो, ये उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। वो भाव लेकर सो गए, तो अगले सुबह जब उठे पूर्णिमा के दिन, 14th डे पे तो नरसिंह भगवान का आविर्भाव हुआ, तो 15th दिन पूर्णिमा के दिन जब उठे तो जो कपड़ा ढक के रखा था ना ऐसे, वो ऐसे ऊपर आ गया था, तुरंत शुद्ध होकर जब उठाया देखा तो उस दामोदर शिला के सामने के हिस्से से पूरा विग्रह प्रकट हो गया है 12 उंगली के साइज का, जिसके चरण कमल मदन मोहन जी की तरह है, जिनका वक्षस्थल जो है वो गोविंद जी की तरह है, जिनका मुख कमल जो है गोपीनाथ की तरह है। सबसे छोटे उम्र में थे, सबने बड़े गोस्वामी को बुलाया उन्होंने, तो रूप गोस्वामी ने आके देखा, अरे ये तो विग्रह इतने सुंदर है, इतने सुंदर अंग बने हैं उसके, इतने वेल डेवलप पूर्णता से विकसित इनके अंग हैं, और तीनों ठाकुरों के दर्शन हो रहे हैं, जो ब्रज के तीन ठाकुर हैं उनके सबके दर्शन इसमें हो रहे हैं। और रूप गोस्वामी का नामकरण किया राधा रमण देव, तो राधा रमण देव जो है जैसे प्रहलाद के लिए तत्क्षण इच्छा पूर्ति करने वाले नरसिंह भगवान थे, राधा रमण देव भी तत्क्षण इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान है। और हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर आपको बहुत कम समय वृंदावन में मिल रहा है, कोई जाने को समय नहीं है, तो आपको एक जगह जाने का समय है तो राधा रमण जाना और दर्शन करके आना, आपको तीनों मंदिरों का दर्शन होगा, तीनों प्रयोजन अभिधेय संबंध सिद्धि होगी वहां पर आपकी, और दिल की इच्छा भी पूरी हो जाएगी तुरंत। लेकिन गलती से ये मत मांगना कि बंगला चाहिए गाड़ी चाहिए, यहां पर मांगने के लिए सोच समझ के मांगना है। राजा के पास जाकर दो रोटी नहीं मांगना है, तो जीवन भर आपको भोजन करा सकता है, उसके पास जाके दो रोटी मांगना नहीं चाहिए। राजा के पास राजा की तरह मांगना चाहिए जो उसके योग्य हो। तो यहां पर आकर हम लोग दुनिया की फूटी टूटी फूटी चीजें नहीं मांगते, यहां पर आके केवल प्रेम भक्ति मांगते हैं, और कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। जब हम दर्शन करने जाते हैं तो इनके इतिहास को, इनकी कथा को श्रवण करते हुए, स्मरण करते हुए उनका दर्शन करना चाहिए। कितने महान ठाकुर जी का दर्शन है ये, इतनी लीला के साथ भगवान ने उसको प्रकट किया है, और ये क्यों प्रकट किया इतनी अलग अलग विग्रहों को अलग लीलाओं से कि हमें और कोई सोचने को समय नहीं मिले। क्या है ना, हमको सबको स्टोरियां बड़ी अच्छी लगती है ना। अब मैं दो घंटे अगर सिद्धांत पे बात करूंगा ना, यहाँ पर कैसे आत्मा नहीं है, कैसे शरीर है, नहीं कैसे शरीर नहीं है, कैसे आत्मा है, आत्मा का स्वरूप क्या है, तीन गुण क्या है, तीन ताप क्या है, और सब बताऊंगा तो आप बोलेंगे प्रभु जी प्रसाद कभी है बहुत ज्यादा हो गया, अभी दिमाग में एकदम प्रेशर आ गया। लेकिन कथा बोलते रहेंगे तो कथा सुनते रहेंगे। ये लीला जो है बड़ी हृदय को लुभावनी होती है, तो भगवान अलग अलग सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला करके हमारे मन को हर लेते हैं, और वो जो विषय विषय की जो वासना है उससे हमको हटा देते हैं भगवान, त्रास से मुक्त कर देते हैं, आनंद से भर देते हैं। तो सुंदर लीलाओं को याद करते हुए हमको दर्शन करेंगे, तो दर्शन ऐसे करना चाहिए कि हमको उनको हृदय में लेकर बंबई ले जाना चाहिए, और आंख बंद करेंगे तो वे विग्रह याद आने चाहिए। हाँ, ये राधा रमन जी, ये मदन मोहन जी, ये गोविंद जी है, ये दामोदर जी है, ऐसे फिट होना चाहिए मन में। एक भी अगर आपको ठाकुर जी के शरीर के ऊपर का अलंकार पसंद आया तो उसको ध्यान से देखना चाहिए, और वो एक अलंकार भी आपको बंबई जाके याद आया, आपकी पूरी धाम की यात्रा सफल है। यहाँ के गोसाई बताते हैं मुझे कि ठाकुर जी को हम लोग इतना सजाते क्यों हैं, ताकि वो सजे धजे ठाकुर जी जो है उनका अगर कुछ अलंकार कुछ अंग आपको पसंद आया समझो, और आपका मन लग गया उसके ऊपर और वो आपको याद आया, तो उनका श्रृंगार सफल है। वो श्रृंगार करते इसलिए है कि आपका दिल लगे उन पर, और वो श्रृंगार जो है उसकी शोभा ठाकुर जी की वजह से बढ़ती है। ठाकुर जी की शोभा उनकी नहीं बढ़ती नहीं है, अलंकारों की शोभा बढ़ती है ठाकुर जी के, उनके बीच में जो अंग दिखाई पड़ते हैं उनके ना कंगन के बीच में इधर उधर, वो अलंकारों की शोभा बढ़ाते हैं। उनका शरीर उनसे अलंकारों से अधिक तेजायमान होता है। तो ये सबको निहारना चाहिए, आंखों का परिपूर्णता है वो ठाकुर जी को निहारना। तो इस तरह से बहुत सारे सहन है वृंदावन में, ठाकुर जी ने यहाँ पर कितना लीला किया है, राक्षसों का वध किया है, गौचारण किया है, भगवान की फेवरेट रास स्थली यही है, चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर अनंत लीला किया है, 2 महीने निवास किया है वृंदावन धाम में, जमुना किनारे कालिया का दमन हुआ है, जमुना किनारे किसी का वध हुआ है, भ्रमर गीत गोपियों ने यहाँ पर गाया है, रास लीला यहाँ पर रचाई है, बंसी बजाकर रात को भगवान ने गोपियों को बुलाया है, सब ठाकुर जी यहाँ पर अपने अपने भक्तों के साथ में उन्होंने लीला किया है, प्रकट अप्रकट लीला किया है। बड़ा दिव्य धाम है ये, बड़े भाग्यवान हो आप सब लोग यहाँ पर आ सकते हो। कई बार आए हैं, ये भगवान की कृपा है, यहाँ पर हमको हमारे आने कोई योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान बार बार बुलाते हैं, कुछ सेवा देते हैं, कुछ लाभ देते हैं, उनकी बड़ी कृपा है।